दृष्टि में देखा जाए तो किसी भी काल में कभी भी किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रूप गोस्वामी बताते हैं कि कोई भी भौतिक बाधा आध्यात्मिक उन्नति के बीच में नहीं आ सकती। और बहुत लोगों ने इसमें भय का अनुभव किया है, बहुत लोगों ने इसमें क्या कहते हैं उसको, इनसिक्योरिटी, असुरक्षित महसूस किया अपने आप को, बहुत लोगों को डिप्रेशन आया हुआ है। लेकिन भगवान की दया से भक्ति वेदांत में अस्पताल में फ्रंट लाइन में बैटल युद्ध लड़ते हुए भी यहाँ पर इतनी बड़ी सेना है, कोई डिप्रेशन में नहीं गया, सब लोग आनंद में रहे। हाँ, बहुत लोग कोरोना भी हो गए पॉजिटिव, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होके अच्छे होके वापस काम पे भी आ गए, कुछ लोग दो दो बार बीमार हो गए फिर तीसरी बार भी काम पे आ गए। तो लोगों का ये साक्षात्कार था कि जब तक हम सेवा में हैं भगवान के, तब तक कोई डिप्रेशन, भय, असुरक्षित होने की भावना ये स्पर्श नहीं करती कभी। लेकिन घर में बैठे हुए लोग जो हैं वो जरूर भय का अनुभव करते हैं चार दीवारी में बैठकर, क्योंकि उनके साथ में टेलीविजन है, वो उनको अनंत भय देने के लिए पर्याप्त है। टेलीविजन इज सफिशियंट टू गिव यू इनफ फियर, इनफ इनसिक्योरिटी, इनफ डिप्रेशन। सो डिवोटीज डोंट हैव टेलीविजन, भक्तों के पास घर में टेलीविजन नहीं होता है, हमारे पास केवल जूम होता है और जूम में हम लोग भक्तों को देखते रहते हैं। मैं आपको विशेष रूप से क्यों विनती करता हूँ, वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि भक्तों को देखने जैसा आनंद दुनिया में कोई है ही नहीं, और भक्तों को देखकर कथा की जाती है। तो भक्तों के चेहरे का एक्सप्रेशन देखेगा, किसी को खुशी हो रही है, किसी को आनंद हो रहा है, तो ये सब देखते हुए कथा में और आनंद आता है। और सबसे बड़ा आनंद जो हमारे गुरु महाराज ने भी जब पहली बार राधा गोपीनाथ मंदिर के भक्तों के लिए कथा किया था, और तो कथा के बाद में एक घंटा केवल भक्तों को निहार रहे थे वो, जैसे मैं बोलूंगा हाँ ब्रज प्रकाश प्रभु जी कैसे हैं आप, हाँ फिर कैसे हैं, फिर बोलेंगे अरे मदन मंजरी जी कैसे हो आप, ऐसे उन्होंने एक घंटा बिताया, सबका नाम लेकर सबसे कांटेक्ट किया, आई कांटेक्ट किया, सबसे बात करवाया, बहुत आनंद आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कितना भी संकट आएगा तो भक्त लोग अपना आनंद का मार्ग ढूंढने निकालते हैं उसमें से। कितनी भी युद्धजन्य स्थिति क्यों न हो, कितनी भी विकट स्थिति क्यों न हो, कितनी भी आपात स्थिति क्यों न हो, लेकिन भक्त लोग अपना अपना आनंद का मार्ग ढूंढने निकालते हैं, क्योंकि सर्वात्मस्तपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। जब तक हरि नाम है, हरि कथा है, धाम अपनी जगह पर उपस्थित है, कोई भक्तों को चिंता करने की जरूरत नहीं। ये न केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत, किसी भी प्रकार से अपने मन को कृष्ण के चरणों में समर्पित रखना चाहिए, लगाए रखना चाहिए। ऐसा करने से भी कभी भी किसी व्यक्ति को ना तनाव का अनुभव होगा, ना डिप्रेशन का अनुभव होगा, ना भय का अनुभव होगा। और एक मैं आपको बात बताता हूँ, मेरी कथा आरंभ करने के पहले, परम पूज्य गिरिराज महाराज से भगवान की दया से हमारा काफी अच्छा संबंध है हॉस्पिस की वजह से, और उनके क्लासेस मैं अटेंड करते रहता हूँ, क्योंकि वो मैं उनके लिस्ट में हूँ, तो मुझे वो अपने लिस्ट भेजते रहते हैं। तो अभी लास्ट जो मैंने उनका क्लास अटेंड किया, तो वो कह रहे थे कि भक्तों को या किसी लोगों को धन से अधिक लालसा रखनी नहीं चाहिए, और पद से नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा महाराज अभी कलयुग में अपना कोरोना में तो धन संपत्ति नष्ट हो रही है लोगों की, तो आसक्त कैसे होना है, धन संपत्ति होगी तो आसक्त होगी ना, अभी तो कोरोना में सब मैदान साफ हो रहा है लोगों का। तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही सुंदर बात बताई, तो मुझे इतनी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि कितना भी कुछ भी होगा लेकिन भक्त लोगों को अन्न की कमी नहीं होगी, वस्त्र की कमी नहीं होगी, और रहने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। अन्न वस्त्र निवारा ये भक्तों के लिए भगवान व्यवस्था करेंगे, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, नो नीड टू वरी। हाँ, बाहरी दृष्टि से हमारे बैंक अकाउंट कम हो जाएंगे और कुछ कुछ हो जाएगा, बहुत सारी चीजें होगी, लेकिन भक्तिमय जीवन चलाने के लिए क्या जरूरी है, उतनी जरूरतें भगवान जरूर पूरी करेंगे। और ये देखेंगे कि हम लोग ये सब आपको देखना है, म्यूट करना तुरंत। तो इन्हीं जो शब्दों के साथ में ये आपको आश्वासन देते हुए कि जो हरि के चरण में है, जो हरि के चिंतन में है, जो हरि के विचार में है, जो हरि की सेवा में है और उनके भक्तों के चिंतन में सेवा में है, उनको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, और सदैव आनंदी रहने का फॉर्मूला हमको प्रभुपाद ने दिया हुआ है। इसलिए भगवान की दया से मैं आपको मैं हृदय पर हाथ कर कह सकता हूँ कि कोरोना की शुरुआत से लेकर आज तक अभी भी मैं शाम का प्रसाद लेते हुए मेरे पत्नी को बता रहा था कि कितना हमारा भाग्य है कि कोरोना के पूरे काल में 6 महीने हो गए, अभी एक दिन भी भय का अनुभव नहीं हुआ, एक दिन भी मानसिक तनाव का अनुभव नहीं हुआ, और आनंद जो है वो भरपूर, मतलब आनंद का इतना अनुभव हुआ है कि पूछो मत। जब शुरू हुआ था तभी वो रामनवमी का मौसम था, तो मैंने कितने सारे क्विज बनाए उसके अंदर, कितने लोगों कितने यूट्यूब पे लेक्चर दिए। हाँ, मेरा एक सपना था कि यूट्यूब का चैनल खोल के भी कुछ करना चाहिए। हाँ, एक ही वीडियो उसके अंदर है, तो कोरोना के काल में 3 महीने में 120 वीडियो हो गए उसके अंदर, प्रसंग के अनुसार, रामायण बोलो महाभारत बोलो, एक के बाद एक, दिन दिन में तीन तीन बनाते रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि आनंद की कोई कमी नहीं है, बस भगवान के चरणों में, भक्तों के चरणों में सहारा लेना चाहिए। फिर कोई भी किसी भी व्यक्ति को, नो बडी विल हैव टू एवर वरी कि वेयर इज द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस विल रन अपॉन यू, इट विल ओवरवेलम यू, आई एम गारंटिंग यू दैट। सो थोड़ा भगवान से अभी प्रणाम करते हैं यात्रा शुरू करने के पहले। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। हा, हरे वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणारघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस भौतिक निर्माण का सर्वोच्च धाम वो है वृंदावन धाम, क्योंकि वृंदावन धाम में और बाकी जितने भी धाम भगवान ने इस पृथ्वी पर प्रकट किए हैं, इसमें क्या अंतर है कि वृंदावन धाम में भगवान की चरण रज उपलब्ध है, और बाकी सारे जितने भी धाम निर्माण किए हैं वहां पर भगवान का चरण का तलुए का स्पर्श भूमि को नहीं होता है, केवल वृंदावन धाम को होता है। इसलिए ये धाम बहुत विशिष्ट है। हाँ, सब सब जितने भी ऋषि मुनि देव जितने सिद्ध लोग हैं, सब लोग भगवान के चरणों की धूल लेने के लिए ब्रज भूमि में आते हैं। और हर एक विशेषता यह है कि जितने भी धाम भगवान ने पृथ्वी पर अवतरित किए हैं, उन सब धामों में भगवान भगवान के रूप में आते हैं। ही कम्स एज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, पूरे ऐश्वर्य के साथ में आते हैं। लेकिन वृंदावन में जब आते हैं ना, तो सारा ऐश्वर्य छोड़ के आते हैं, केवल माधुर्यों को अपना कर लेके आते हैं, माधुर्यों को अपनाते हैं खाली। और एक काम करते हैं, जिन जिन को ब्रज में उनको जन्म देना है, उनका ये जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान जिससे वो भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं, ये ज्ञान छीन लेते हैं। कौन सी माया से? जगन मोहिनी माया से। दशम स्कंध में इसका श्लोक दिया गया है कि जगन मोहिनी माया के माध्यम से उन सारे भक्तों का वो ज्ञान छीन लेते हैं जिससे वो ये जान सके कि मैं भगवान हूं, मतलब वो जान नहीं सकते इसके आगे भी। इसलिए ब्रज में जो भगवान की इच्छा से जन्म लेते हैं, वो कोई भी जानते नहीं कि यही कौन है, ये वैकुंठाधिपति है, गोलोकेश्वर है, कोई जानता नहीं। नोबडी नोज, फॉर देम इज ओनली अ फ्रेंड, ओनली अ बॉय, ओनली अ चाइल्ड, ओनली अ बॉयफ्रेंड, दैट्स ऑल। तो ये एक और एक विशेषता है। कैसा है ना, हमारा जो जो कोई भारत का कोई मशहूर क्रिकेटर हो, उसको ना भारत में एक पेन भी खरीदना मुश्किल है, क्योंकि जहाँ जाएगा वहां पर रिपोर्टर पब्लिक, अरे अरे आएगा आएगा आ गया तेंदुलकर आ गया तेंदुलकर आ गया, तो बेचारे को जो हमको जितना अलग अलग पेन चूज करके खरीदने का जो हमारे पास इंडिपेंडेंस है वो बेचारे उसके पास नहीं होती है, तो वो क्या करता है अपनी छुट्टियां मनाने के लिए ऐसी जगह जाता है जहां पर उसको कोई जानता नहीं है, यहाँ तक कि क्रिकेट का गेम भी जानता नहीं है, ऐसी जगह जाता है वो, और वहां जाके पूरा अपने जो कपड़े लगते पैंट टी शर्ट ट्राउजर टूथब्रश टूथपेस्ट पेन सब खरीद लेता है। उसी तरह से भगवान भी सब जगह सलाम सबका स्वीकार करते ना, वंदन पूजन श्लोक पठन ग्लोरिफिकेशन सब सुनते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं उनको एक जगह चाहिए जहां पर कोई उनको जानता नहीं है भगवान के रूप में। हाँ, nobody knows him as God, he just wants to be on his own, he wants to have his own space। हर एक को अपनी चाहिए ना स्पेस, चाहिए ना स्पेस, पति पत्नी को भी स्पेस चाहिए रहती है अपने लिए, ताकि वो अपना एक खुद का जीवन खुद की भावनाओं को व्यक्त कर सके। तो वो स्पेस जो है भगवान की वो वृंदावन है, जहां पर वो एक नटखट बालक एक चोर बालक हाँ एक बहुत शैतान बालक एक छद्मी बालक बन के आते हैं, और जैसा चाहे वैसा मर्जी रह सकते हैं, डर रख के माँ की गोद में भाग सकते हैं, माँ के घर से माखन चुरा सकते हैं, और बाहर जाकर चोरी कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं दिल से एकदम। तो मैंने क्या कहा है कि पूरे वैकुंठ का लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्य मानव गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, ये वैकुंठ का इतना सारा अनंत लक्ष्मियों का ऐश्वर्य छोड़कर वो पृथ्वी में वृंदावन में आते हैं ताकि वो गोपियों के घर जाकर चोरी करके छाछ और दूध और मक्खन खा सके। सोचिए आप कितना ये इम्पोर्टेंट धाम है हा? और उसमें से भी 84 कोस का हिस्सा है ना गोलोक वृंदावन का नीचे आया हुआ है, उसमें 20 कोस का जो हिस्सा है ना वो केवल वृंदावन है। आजकल का वृंदावन जो है भौगोलिक वृंदावन है, ज्योग्राफिकल है, हम लोग पौराणिक वृंदावन की बात कर रहे हैं। तो उस वृंदावन के अंदर देखिए यमुना जी पुरी गोवर्धन पूरा नंदगांव बरसाना जावट ये सब कुछ आता है, 20 कोस की एरिया है। और उसकी विशेषता क्या है, नंदगांव बरसाना इस इलाके में कभी राक्षस नहीं आया कोई, तो हम आपको बरसाने की कथाएं बताएंगे, क्योंकि कंस को जब बरसाने में एक बार आया था ढूंढ ढूंढ के, तो कंस को हमारी राधा रानी ने कन्या बना दिया था, माताजी बना दिया, माताजी कंस ने गोपी बना दिया, तो उसको मोटल्ली गोपी करके बहुत चढ़ाया गोपियों ने 6 महीने तक, तो इसलिए वापस कभी आया नहीं वो, राधा रानी को डरता था वो। एक साधु ने रिसर्च किया था कि कंस को भय किसका था, एक्चुअली लगता था ऊपर से कृष्ण का भय था, लेकिन वो एक्चुअली राधा रानी से भयभीत था, राधा रानी के भय से वो कभी उधर गया भी नहीं, कभी उस तरफ घूमने को भी गया नहीं, और कृष्ण को मारने के लिए हमेशा प्रयास करता रहा, खुद उसको अपने पास बुलाया मारने के लिए, तो उतना भय कृष्ण का नहीं था जितना उसको राधा रानी का भय था। तो इसलिए आज हम नंदगांव चलेंगे जहां पर राधा रानी के योजना से कभी भी किसी भी राक्षस ने प्रवेश नहीं किया। तो सबको मैं बधाई देता हूं आपको कि आप नंदगांव में अभी प्रवेश करने वाले हैं। आपको ये नजर आ रहा तो सब ऊपर करना, हाँ बराबर, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये नंदगांव जो है इसका इतिहास बड़ा रोचक है। शंकर जी महाराज ने तपस्या करके विष्णु भगवान से कृष्ण भगवान से आशीर्वाद मांगा था कि मैं आपके गांव में आकर रहना चाहता हूँ और आपके सारे लोगों के चरण कमल मेरे सर पे गिरने चाहिए, तो भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और नंदगांव में शिवजी महाराज नंदीश्वर के रूप में बस गए। और नंद महाराज का इतिहास ऐसा है कि एक राजा थे उनका नाम था देवमीड, देयर वाज अ किंग कॉल्ड देवमीडा एंड दिस देवमीडा हैड टू सन्स सॉरी टू वाइव्स, एक क्षत्रिय पत्नी थी और एक वैश्य पत्नी थी, और क्षत्रिय पत्नी से उनको पुत्र हुआ शूरसेन और वैश्य पत्नी से उनको पुत्र हुआ परजन्य महाराज, और जो परजन्य महाराज थे वो नंदगांव में थे पहले, और नंदगांव में एक जगह है बहुत सुंदर, उसका नाम है प्रेम तड़ाक तीर्थ और एक नाम है उसका क्षुण्णहार तीर्थ, क्षुण्णहार कुंड। इस जगह पर प्रजन्य महाराज ने बहुत कड़ी तपस्या की थी और वहां पर उनको भगवान ने दर्शन दिया था और कहा था कि आपको 5 पुत्र होंगे और इसमें से एक पुत्र जो होगा वो साक्षात भगवान का पिता बनेगा, ऐसे उनको वरदान दिया था। लेकिन आगे क्या हुआ, केशी राक्षस के भय से, मतलब वहां पर आतंक किया, केशी राक्षस ने बहुत सारा लोगों को तकलीफ दिया, तो उसके भय से वो लोग गोकुल में आए और गोकुल में आने के बाद में परजन्य महाराज को 5 पुत्र की प्राप्ति हुई। क्या क्या नाम है उनके, आप नोटबुक लेके उसको लिखते रहना बीच बीच में, हाँ, उपनंद महाराज, अभिनंद महाराज, नंद महाराज, सन्नंद और नंदन चाचा। उपनंदा, अभिनंदा, नंदा, सन्नंदा या सुनंदा और आखिर वाले नंदन चाचा। तो ये 5 पुत्रों का जन्म हुआ यथावकाश। देखिए ऐसा सुंदर रिश्ता था उनका, यथावकाश प्रजन्य मार्ग संतुष्ट हो गया अपने 5ों सद्गुण संपन्न बालकों को देखकर। युवा अवस्था में आए तो उन्होंने सोचा कि अभी वानप्रस्थ लेना चाहिए, तो उन्होंने उपनंद महाराज का राज्याभिषेक कर दिया और राज्याभिषेक के समय उपनंद महाराज मुकुट धारण किए हुए, उनका अभिषेक हो गया है, मंत्रोच्चारण हो गया है, उनको राज मुकुट राजदंड प्राप्त हो गया है और उसके बाद में वो नंद महाराज की ओर निहारते रहे बहुत ही प्रेम से, बहुत देर तक निहारते रहे। सब लोग शांत थे, सब लोग अभी सोच रहे थे क्या होगा, अभी क्या होगा, व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन। तो अचानक नंद के पास उपनंद बाबा गए और उपनंद महाराज ने नंद महाराज को अपना मुकुट पहना दिया, तो नंद महाराज बस आश्चर्यचकित हो गए। तो उपनंद महाराज ने कहा कि हम सब में से सर्वोच्च गुण संपन्न जो है वो नंद है, मेरे पिताजी ने ये तो हमको सौंप दिया है लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मुकुट जो है वो नंद को प्राप्त हो। नंद बहुत संकुच गए, उन्होंने कहा कि मेरी एक ही शर्त है, मैं आपकी अगर इच्छा है तो ये राज मुकुट स्वीकार करता हूँ लेकिन आपकी सलाह के बिना मैं राज्य नहीं करूंगा, राज्य कारोबार नहीं चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, और ऐसा नहीं कि उस समय मुंह बोली बात कर दी, लेकिन आगे जितना इतिहास आता है हर समय पर उपनंद बाबा के सलाह के अनुसार ही उन्होंने राज्य कारोबार किया है, तो ऐसा इसका इतिहास है। दूसरा इतिहास यह है कि उधर माँ मेहरानो नाम का गांव है, मेहरानो, मैं कई बार यात्रा लेके गया हूँ लेकिन बहुत दुर्लभ स्थान है वो, यशोदा देवी का जन्म स्थान है, वहां पर उनके पिताजी का नाम है सुमुख गोप, सुमुख गोपा, और माताजी का नाम है पटुला गोपी। तो सुमुख और पटुला इनके पुत्री के रूप में यशोदा का जन्म हुआ, उसको 2 भाई थे यशधर और यशवंत और कन्या थी यशोदा, सबको यश देने वाली थी वो, सबको आनंद देने वाली थी। और वृषभानु महाराज का भी इतिहास ऐसा है कि उनके दादा का नाम था मई भानु जी, नहीं पिताजी का नाम था मई भानु जी, दादाजी का नाम था कुंज भानु जी और मई भानु जी को 9 पुत्र हुए, उसमें से बीच वाले पुत्र थे हुए वृषभानु महाराज के, और ये वृषभानु महाराज नंद महाराज बहुत अच्छे मित्र थे। तो वृषभानु महाराज ने नंद बाबा की सगाई यशोदा मैया से कराई और फिर यशोदा मई नंदगांव में आई, यानी उसके पहले उसके बाद में फिर वो गोकुल भी गए। तो ये सब जो कार्यक्रम था राज्याभिषेक का और नंद महाराज को फिर सौंपने के, सब गोकुल में हुआ यथावकाश। गोकुल में फिर कृष्ण भगवान भगवान का जन्म हुआ, बलराम जी का जन्म हुआ और फिर रावल में राधा रानी का जन्म हुआ और रोज कंस के द्वारा जमुना पार करके एक एक राक्षस का आना शुरू हो गया। सुखदेव जी भागवत में तो वर्णन इतना नहीं कर पाए क्योंकि समय बहुत कम था उनके पास, लेकिन रोज के पैमाने पे एक राक्षस मथुरा से गोकुल में आया करता था और भगवान उसका वध करते थे। लेकिन एक वर्ष के बाद में जब तृणावर्त का वध हुआ तो सब सावध हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं अभी यहाँ पर रहना अच्छा नहीं, उपनंद बाबा ने सलाह दिया कि आपको चलना चाहिए। तो फिर वहां से कारवा निकल गया, वृषभानु महाराज भी निकल गए साथ में और सटेकरा में रुकते हुए, काम्यवन में रुकते हुए फिर नंदगांव पहुंचे सब लोग, और वृषभानु महाराज बरसाने में बस गए वापस एक बार, नंदगांव में हमारे नंद बाबा बस गए। अभी देखिए मैं आपको नंद भवन का दर्शन कराता हूँ, ये देखिए कितना सुंदर दर्शन है नंदगांव का। जय नंदगांव बाद धाम की जय। उसके सामने जो कुंड है वो सूर्य कुंड है, नंदगांव का सूर्य कुंड। अभी चैतन्य महाप्रभु का इसमें सुंदर इतिहास है, वो जानना जरूरी है बहुत। ये भक्ति रत्नाकर में आता है। तहां लीला सरी देखी केला नंदीश्वर, नंदीश्वर देखी प्रेम होइल अभी बोल। पावन आदि सर्व कुंड स्नान को रिया, लोकेरा पूछी लो पर्वत ऊपर जाइया। किच्छु देव मूर्ति होए ऊपर पर्वत ऊपर, मतलब काम्य वन से आने के बाद में चैतन्य महाप्रभु नंदगांव आए और पावन कुंड आदि सभी कुंड में स्नान किया। लोगों से पूछा, लोकेर पूछी लो पर्वत के ऊपर क्या मूर्ति वूर्ति है क्या कुछ। किच्छु देव मूर्ति होए पर्वत ऊपर, लोको को है मूर्ति होए गोफर भीतरे। तो लोग बोलते हैं गुफा के अंदर है। दुई दिखे माता पिता पुस्तक लेवर, महाप्रभु चैतन्य पावन सरोवर में स्नान करके पर्वत पे चढ़े, पर्वत में गुफा में घुसे। हाँ तो क्या देखा, दुई दिखे दोनों तरफ हष्ट पुष्ट माता और पिता। मध्य एक शिशु होए त्रिभंग सुंदर, एक सुंदर बालक बीच में बैठा हुआ है। सुनी महाप्रभु मुने आनंद पाईया, तीना मूर्ति देखो लो सही गोफा उगाड़िया। ब्रजेंद्र ब्रजेश्वरी कोइलो चरण वंदन, ब्रजेंद्र यानी नंद महाराज, ब्रजेश्वरी यानी यशोदा माई, दोनों के चरणों को वंदन किया। प्रेमा बेश कृष्ण कोइलो सर्वांग स्पर्शन, प्रेम में आवेश में आकर कृष्ण बलराम को, कृष्ण को प्रेम सर्वांग स्पर्श किया। सब दिन प्रेमावेश नित्य गीत कोयला, हर रोज नंदगांव में रहते हुए उन्होंने आनंद का कीर्तन किया, संकीर्तन आनंद किया। तो वहां से खदरी बन चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने यशोदा नंद महाराज और कृष्ण की मूर्तियों को प्रकट किया। लोगों को पता था लेकिन पता नहीं था कृष्ण बलराम और कृष्ण और नंद बाबा है करके। उसके पहले इतिहास कहता है कि वृषभान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध के पुत्र जो है वज्रनाभ, उनको भगवान ने आदेश दिया था कि मेरे बाद में ब्रज को बसाना, मूर्तियों को स्थापन करना, वनों को संवारना और मेरी लीला और सलीलाओं को मेंटेन करके रखना। तो उस समय वज्रनाभ ने ये विग्रह बनाए थे, कालांतर में लुप्त हो गए और फिर चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने दोबारा प्रकट किए। उस समय उसके पहले 1285 में आनंद घन बाबा थे एक, जो नंदगांव के सभी गोस्वामियों के पूर्वज माने जाते हैं। उनका बड़ा लीला है, बहुत सुंदर लीला है। उन्होंने ही ये नंद बाबा यशोदा और कृष्ण की मूर्तियों का पूजन शुरू किया था और उसके बहुत बाद में महाप्रभु आए। उसके बहुत बाद में फिर बलराम जी का विग्रह लाया गया, धनसुखा मनसुखा का विग्रह लाया गया, राधा रानी का विग्रह लाया गया, बांके बिहारी जी का विग्रह लाया गया। इस तरह से आगे आपको दर्शन कराऊंगा कि सारा पूरा परिवार का दर्शन जो है वो नंदगांव में आपके लिए उपलब्ध है। अभी वो जानना जरूरी है कि आदि पुराण में कहा है कि यत्र नंद उपनंदास्ते प्रतिनंद अभिनंदनः चक्रुवासं सुखस्थानयतो नंद अभिधानकम्। ये पांचों भाई जो है ना बड़े प्रेम से नंदगांव में रहे। बरसाना में कैसे थे, नौ भाई थे, एक भाई बीच में रहे बरसाना में, आठ भाई आठ गांव में रहे। यहाँ पर सारे भाई प्रेमवश एक ही गांव में रहे और हर एक भाई को दो दो पुत्र हुए जो कृष्ण के अष्ट सखा हुए। उपनंद का विवाह तुंगी से हुआ, प्रभावती जी से। अभिनंद का पीवरी से हुआ, नंद का यशोदा से हुआ। सन्नंद का बकुला देवी से हुआ और नंदन चाचा का विवाह अतुल्या देवी से हुआ। इन सब लोगों को दो दो बालक हुए और वो कृष्ण के अष्ट सखा बन गए। बहुत सुंदर है, उसमें बहुत सारा नंदगांव का जो भाव है ना वो समझना बहुत जरूरी है। जिस गांव में हम प्रवेश कर रहे हैं इसका मेन भाव जो है वो वात्सल्य भाव और साख्य भाव, दो भाव यहाँ पर प्रधान है, वात्सल्य और साख्य, मित्रता और माता पिता का प्रेम। साख्य में प्रिय सखा है, प्रिय नर्म सखा है, परमेश्वर सखा है, समवयस्क सखा है, हर प्रकार के सखा है। श्रीदामा समवयस्क है, मतलब कृष्ण को डांट भी सकते हैं, कंधे पे चढ़ सकते हैं, उसको दंड दे सकते हैं। और छोटे सखा भी हैं जो कृष्ण की ड्रेस पहनाने में, चरण दबाने में मदद करते हैं। वो बड़े सखा भी है, मंडली भद्र जैसे, बलराम जैसे, जो रक्षा भी करते हैं। ये सब प्रकार के सखा एक साथ नंदगांव में रहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी जो है ना वो पुण्य करके नंदगांव में भगवान के सखा बनते हैं। और एक विशेष बात नंदगांव की कही गई है कि नंदगांव में रह के तपस्या कर जो व्यक्ति करता है और नंदगांव में टिक पाता है उसको सिद्ध कहा गया है, क्योंकि नंद बाबा नंदगांव में आज भी जो युवा या बालक हैं बहुत उद्दंड रहते हैं। कृष्ण भगवान के सखा बहुत उद्दंड थे, हाँ बड़े प्रेमी हैं लेकिन बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ज्यादा उद्दंडता करते हैं। तो तपस्वी अगर उनकी उद्दंडता झेल कर अपना भजन कर सकता है तो उसको वो तपस्वी मानते हैं और सिद्ध बाबा मानते हैं। आगे जाकर हमारे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है वो क्या कहते, सुनिए आप। यत् सौभगम भगवता धरणी वृतापि न प्राप्यते सुरगिरिहि सहि को वराकः नन्दः स्वयं वसति यत्र सपुत्रदारो नन्दीश्वरः स मन्द मन्द मुन्द दधातु। संक्षेप में इसका अर्थ ऐसा है कि गोवर्धन को भगवान ने 7 दिन 7 रात उठाया, लेकिन गोवर्धन से भी कई गुना अधिक भाग्य नंदगांव का है, नंदेश्वर का है, क्योंकि नंदेश्वर में हर दिन 11 दिन 11 साल 52 दिन तक उन्होंने उनके सर पर लीला किया, नंदेश्वर को हर रोज चरणों का धूल दिया और 7 दिन बहुत उत्कट लीला किया गोवर्धन उठाए हुए। इसलिए वो कहते हैं कि गोवर्धन से भी नंदीश्वर बहुत भाग्यवान है। और फिर जीव गोस्वामी क्या बताते हैं अपने भागवत की टीका में, ये उनके पद्म पुराण में आती है टीका उनकी। तस्मिंश्च भवते श्रेष्ठम रम्ये दीपर विराजिते लक्ष्मे विचित्र पर्यंके नाना पुष्प निवासिते तस्मिन् शेते हरि कृष्ण शेषे नारायणो यः। उस श्रेष्ठ रमणीक दीप मणि पुष्प से सुयोजित सुशोभित नंद भवन में पुष्प शैया पर कृष्ण बलराम विराजते हैं। इस तरह से नंदगांव का ये महात्म्य है, जितना गुणगान करे उतना कम है, लेकिन जानना जरूरी है कि नंदगांव में भगवान ने बहुत सारी लीलाएं की, जैसे वत्सपाल लीला बछड़ों को चराया, गोपाल लीला गोपाष्टमी लीला, हाँ और माखन चोरी की लीला, कितना सारा लीला किया, बहुत सुंदर लीला किया। अब ये सुंदर वल्लभाचार्य जी का भजन है, मणिमय आंगन नंद के खेलत दो भैया, खेलत दो भैया। सब मणिमय आंगन है, रत्नों से भरे हुए सीढ़ियां हैं, उसके अंदर कृष्ण और बलराम खेल रहे हैं, खेलत दो भैया। रुन झुनु बाजे पजनिया, खेलत दो भैया। उनके पैरों में घुंघरू बज रहे हैं, उसकी आवाज से वो रीझ रहे हैं, ठोक ठोक के बजा रहे हैं, सुन रहे हैं कि सुंदर ध्वनि आ रही है। तो ऐसे भगवान की लीला है नंदगांव में। एक छोटी लीला मुझे याद आ रही है अभी कि जब कृष्ण तो रेंगते थे ना, वो आंगन में रेंगते थे, सब नंद बाबा रोहिणी यशोदा सब देखते थे उनको। तो एक बार रेंगते ना, आप जानते होंगे बच्चों को ना सीढ़ी उतरने की बहुत कुतूहल होता है उनके मन में, हमेशा वो हमेशा सीढ़ी में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। तो चप्पल पहनना चाहते हैं बड़ों बड़ों की, और उसकी दूसरी बात है कि सीढ़ी उतरना बहुत उनके थ्रिलिंग मैटर है, और नंदगांव की सीढ़ियां बहुत बड़ी बड़ी थी। तो सीढ़ी उतरने की कोशिश करते करते एक बार क्या हुआ, सीढ़ी पे वो लटक गए, थोड़ा सा पेट उनका बड़ा था तो सीढ़ी के पहले ही एंगल में उनका पेट लटक गया और पैर अगली सीढ़ी में पहुंच नहीं पाया। तो क्या हुआ, पेट के बल पर हमारे भगवान जो ऐसे लटक रहे हैं, नारद मुनि वहां से गुजर रहे हैं, उनको ये दर्शन देकर इतना आनंद हुआ, आंखों से अश्रू आए और फिर वो रोने लगे, क्यों, अरे देखो देखो कितने योगी तपी ध्यानी इतना ध्यान लगाकर गुफा में बैठे हुए हैं, अरे उनको यहाँ आना चाहिए, जो परब्रह्म को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं वो परब्रह्म नंदगांव की सीढ़ी पर लटक रहा है, देखो परब्रह्म जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड इज हैंगिंग ऑन द स्टेप ऑफ नंदगांव एंड स्विंगिंग ऑल्सो लाइक दैट। तो ये बहुत सुंदर भाव है नंद भवन का, कि जो पूरे विश्व को नियंत्रण करते हैं, हाँ तो यहाँ आप आकर यशोदा माई से चलना सीखते हैं तो पूरे विश्व को चलाते हैं, पूरे विश्व को इतना बड़ा ज्ञान देते हैं भगवद गीता का और बाकी सबका, और यहाँ से यशोदा मैया से तोतले बोलना सीखते हैं। यशोदा मैया की तो देखो देखो मैं चलने को सिखा रही हूँ लेकिन चल नहीं रहा है, केवल पेंजन की आवाज ठोक ठोक के बार बार सुन रहा है, देखो कैसे आनंद आ रहा है, चलता नहीं है, केवल पेंजन की आवाज सुन के ठोक 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 करके वहीं खड़ा है। फिर वो जाते हैं आगे, जब आगे आगे जाते हैं फिर क्या करते हैं, एक बड़ा सा आदमी खड़ा है, एक छोटे से भक्त दिखे हैं, तो लगता है कि नंद बाबा आ गए, तो नंद बाबा समझ के उसका कुर्ता पकड़ के खड़े हो जाते हैं, तो वो आदमी पीछे मुड़ के दिखता है तो वो नंद बाबा नहीं है, तो डर के हमारे कृष्ण बलराम भाग के मैया के गोद में भाग रहे, मैया मैया डर लग रहा है हमको, जाके स्तनपान करते हैं। इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं यहाँ पर हुई है। और दूसरी बात यह कि नंदगांव में इतना वैभव था, इतना वैभव था, मैं आपको एक बात बताता हूँ उस वैभव की जानकारी के लिए, क्या वैभव था उनका, तो वैभव ये था कि जो मैया दधि मंथन करती थी और छाछ बनाती थी और सब सखियों को देती रहती थी, तो उस समय जो गिरता था ना बांटते समय, वो गिर गिर के एक कुंड बना, उसका नाम बना छाछ कुंड। इतना वहां पर वैभव था कि गिरे हुए छाछ से ही एक कुंड बना, छाछ कुंड, वहां से भी यशोदामाई लोगों को छाछ बांटती थी। ऐसे नंदगांव में 56 कुंड है आज, लेकिन बहुत सारे कुंड लुप्त हो गए, लेकिन 56 कुंड थे उसके अंदर, काजल कुंड, फुलवारी कुंड, क्या क्या बताएं आपको, पनिहारी कुंड, तो सब है लेकिन सब शुष्क हो गए अभी। एनीवेज बहुत सारा वैभव है। दूसरा और एक उसका महत्व यह है कि नंदीश्वर पे शिवजी विराजमान है और वहां पर भगवान की रज का अपने सर पर लाभ लेते हैं। नंदगांव में बरसाने में ससुराल का रिश्ता है, ससुराल मैका का रिश्ता है, नंदगांव वाले अपने ससुराल को समझते हैं बरसाना, और वहां पर होती है नोक झोंक, यानी कि वाद विवाद भी होता है उनका काव्य स्वरूप में, साहित्यिक रूप में, बहुत सुंदर। अभी आप देखिए आपके सामने नंदगांव का मैप है, सबसे बीच में नंदगांव, देखिए मेरा आरोह घूम रहा है, वहां पर नंदीश्वर है, सबसे भाग्यवान जीव शिवजी महाराज, उसके आगे जाएंगे तो लेफ्ट टर्न आएगा, आगे जाके तो वहां से सनातन गोस्वामी, पावन सरोवर, वृंदा देवी, फिर यहाँ राइट टर्न लोगे तो इधर सूर्य कुंड, कृष्ण कुंड, उद्धव क्यारी, हाँ टेर कदम्ब, और टेर कदम्ब के पहले आशीष्वर महादेव, फिर नदी मांड, फिर गौशाला, ऐसे बहुत सारा चीजें, कुछ लेफ्ट साइड में नंदगांव मंदिर की ओर, कुछ रोड के इस साइड में, हाँ तो इसको हम आगे चलते हैं। अभी देखिए आप दूर से पावन सरोवर की तरफ से आप नंद भाव का दर्शन कीजिए, देखिए कितना सुंदर दर्शन है, जो जो, जो सफेद जो है ना कलश दिख रहे हैं आपको, वो नंदगांव का दर्शन है। ये अभी आपको आशीष्वर की तरफ से दिख रहा है नंदगांव का दर्शन, फिर आप आएंगे अभी ये ब्रजेश्वर महादेव की तरफ से आपको दिख रहा है, चारों तरफ से हमने फोटो लिए है, ये नंद भवन का दर्शन है। हाँ और ये पीछे का रास्ता है जहां से हम अंदर जा सकते हैं, और ये प्रवेश द्वार है, जब सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते जाएंगे तो ये प्रवेश द्वार आएगा, और फिर हम नंदगांव के नंदीश्वर के ऊपर आ गए। अभी सबसे पहले यहाँ पर आने के पहले सबसे पहले यहीं से हम अभी प्रणाम करते हैं नंदीश्वर भगवान को, मैं प्रणाम करूंगा, आप सुनिए। नंदीश्वराय देवाय उत्पत्ति हिताय च यशोदा सुखदाय महादेवाय ते नमः। यशोदा और कृष्ण को सुख देने वाले नंदीश्वर महादेव को हम प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि नंदीश्वर तो महादेव है ना, वो देवताओं के महादेव है, उनके सर पे हम चढ़ने वाले हैं, तो क्षमा तो याचना करनी चाहिए ना, तो उनके सर पे चढ़ने के पहले क्षमा याचना करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि आपके सर पे हम चढ़ेंगे केवल एक ही भाव से कि हम कृष्ण बलराम का दर्शन करेंगे, कोई इंद्रिय भोग नहीं करेंगे, आपकी कथा सुनेंगे, आपका दर्शन करेंगे और कोई इंद्रिय भोग का काम नहीं करेंगे, ऐसे भाव करके हम ऊपर जाएंगे। और ये है टॉप नंदेश्वर का, आगे जो सफेद लंबा हिस्सा है उसको जगनमोहन मंडप कहते हैं, जगमोहन मंडप, और जो बाग पीछे है वो पीछे, और एक छोटा जगमोहन मंडप है, उसके आगे जो लास्ट मंडप है बड़ा वाला जिसमें झंडा लगा हुआ है ऊंचा, उसमें नंद भगवान विराजते हैं, देखिए कितना सुंदर दर्शन है। और ये हमारे कृष्ण बलराम यशोदा माई, बोलो नंद बाबा की जय हो, यशोदाला की, यशोदा मैया की जय हो, नंद के लाला की जय हो, कृष्ण बलराम की जय हो। अभी देखो पूरा परिवार का दर्शन है, सबसे बीच में जो मैया के पास खड़े हैं वो नंद के लाला कृष्ण भगवान है कन्हैया, तो बाबा के पास बड़े बड़े भैया खड़े हैं वो बलराम जी हैं, और बीच में उसके हेलो एन मेघा, हरे कृष्ण, एक बार हरे कृष्ण जब कीजिए, मैं जरा बैटरी चेंज करता हूँ इसमें से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलते रहिए।
हरे कृष्ण को
बोलो बोलो बोलो। हरे कृष्णा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभी सब लोग म्यूट हो जाइए। तो मैं ये कह रहा था कि कृष्णा बलराम बीच में बाजू में नंद बाबा यशोदामई, लेफ्ट में हमारे लेफ्ट में राधा रानी ससुराल के भाव में खड़ी है, हाँ बहू के रूप में खड़ी है, और राइट में धनसुखा मनसुखा है। धनसुखा मतलब कौन? मधुमंगल नहीं, धनसुखा मतलब श्री दामा, और मनसुखा मतलब मन को आनंद देने वाला मधुमंगल। ये दोनों भगवान के बड़े प्रिय सखा है, एक ब्राह्मण है एक वैश्य है। अब जरा गौर से देखिए वो दोनों कहाँ देख रहे हैं। वो दोनों आपकी तरफ नहीं देख रहे हैं, वो दोनों अपने लेफ्ट में देख रहे हैं। क्यों? वहां पर एक अलमारी है, उसमें बंटा भोग लड्डू रखा रहता है। इसलिए पुजारी कितनी बार उनको उनकी पोजिशन चेंज करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद में वैसे ही दिखाई पड़ते हो। ये रोज का उनका अनुभव है, ये कितने भी उनको घुमाएंगे ना तो आप उनको बाद में आपको देखेगा कि वही देख रहे हैं। और अभी आगे जाएंगे, देखिए ये और एक दर्शन उत्सव का है। और ये देखिए श्री कृष्ण भगवान 2020 के जन्माष्टमी का ये चित्रपट है, इस साल का जन्माष्टमी का श्रृंगार है। बड़े प्रेम से देखिए निहारिए भगवान को हा? और ये देखिए ये दोनों भैयाओं का श्रृंगार है। इसमें क्या है? झबला टोपी, यानी कृष्ण का अभी भी जन्म हुआ है ना, तो कृष्ण को 7 दिन तक झबला टोपी पहनाते हैं। तो कृष्ण भगवान जन्म के भाव में है, बलराम जी बड़े भैया के भाव में। जय हो कृष्ण बलराम भगवान की। और फिर आगे देखेंगे तो ये विशेष चीज है, देखिए ये झबला टोपी का दर्शन के बाद में शालिग्राम शिला है। नंद बाबा इसको पूजते थे, एक बार कृष्ण भगवान खेल रहे थे आसपास में, नंद बाबा इसको पूजन कर रहे थे तो कहीं चले गए बीच में कुछ काम से, वापस आए तो शालिग्राम शिला गायब। सब जगह ढूंढा, फिर कृष्ण को पूछा तो कृष्ण खाली हाँ हाँ इतना ही कह रहे हैं, ना बोल रहे खाली बस। बहुत देर बाद शंका आई, कृष्ण बोल क्यों नहीं रहा है? अरे बताओ तो सही, कहीं कहाँ देखी आपने शालिग्राम शिला? इतना ही बोल रहे। बाद में मुंह मोड़ो खोलो मोड़ो खोलो, खोल दिया तो मुंह से निकाली बाहर, क्योंकि उनको लगा कि खाने की वस्तु है, तो कन्हैया खा गया उसको। और मुंह में रख दिया तो मुंह में शालिग्राम शिला, विष्णु महाराज जो है ना कृष्ण के मुंह में होने से उनको उन्मा मतलब अति आनंद का अनुभव हुआ, तो पिघलने लगे वो, तो भगवान के दांतों के निशान बने उसके ऊपर। देखिए आप गौर से देखिए, भगवान के दांतों के निशान बने हुए हैं शिला के ऊपर। ये शिला भगवान के मुख में रही थी। अभी कभी कभी आपके पुजारी पहचान के होंगे ना, तभी आपको निकाल के दिखाएंगे। इसके बाद में नंदीश्वर का दर्शन कीजिए। नंदीश्वर महाराज जी बड़े ही महान भगवान के भक्त हैं, वैष्णवानां यथाशंभु, इनका दर्शन कीजिए। इनकी कथा आपको आशेश्वर महादेव की कथा के साथ बताएंगे, उनका बड़ा भाग्य है वो आपको आशेश्वर की कथा में बताएंगे। और ये आप एक स्टेप ऊंचे उतरेंगे ना तो एक मंदिर आएगा वहां पर, रास विहारी मंदिर। ये हमारे गुरु महाराज के बड़े अच्छे मित्र थे ब्रजभूषण गोस्वामी बिड़जी बाबा, उनके घर पे ये आधे कृष्ण और आधे राधा रानी का विग्रह है। ये गोस्वामी को स्वप्न में दर्शन हुआ था और प्रकट किए थे विग्रह, ये बिड़जी बाबा के घर में विराजमान है। अभी देखिए कितने सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। रोज बाबा वत्सपाल करके कृष्ण घर पे आते थे, बाबा को मिलते थे, कृष्ण भगवान गौचारण करते थे, फिर मैया बाबा उनको प्रेम से खिलाते थे, सब सखियां खिलाती थी, बड़ा आनंद है नंद भाव में। फिर गौचारण करने जाते थे बचपन में, वो बछड़ों को पूछ पकड़ के गौशाला में स्केटिंग करते थे पेट के बल पर। और ये है नरसिंह भगवान का और वराह देव का मंदिर। ये मंदिर से आप उतरेंगे नीचे तो आपको मिलेगा कुछ स्टेप्स पहले, जमीन के आने के पहले, और जब भी संकट आता था कृष्ण के ऊपर तो नंद बाबा इन वराह देव और नरसिंह भगवान की कृष्ण की सुरक्षा के लिए पूजा करते थे। बहुत नजदीक से देखिए, राइट में आपके वराह देव हैं और लेफ्ट में नरसिंह भगवान हैं। ये नंद बाबा के द्वारा पूजित हैं, बड़े विशेष विग्रह हैं ये। देखिए कितने सुंदर विग्रह हैं, ये पूरा दर्शन है। बहुत पुजारी यहाँ के प्रेमी हैं और बहुत प्रेम से स्वागत करते हैं। दर्शन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हमारे भी जीवन में रक्षा करें संकट से नरसिंह बाबा और वराह देव। उससे नीचे जाएंगे तो आपको यशोदा कुंड मिलेगा। अभी कैसा है कि नंद बाबा की कहानी, नंद गांव की कहानी 3 दिन तक कर सकते हैं, कम से कम 6 घंटा तक, लेकिन हमारे पास समय की पाबंदी, इसलिए हम लोग आपको खाली दर्शन कराते हैं और यशोदा कुंड का दर्शन कीजिए। हर एक कुंड में आपको मन से स्नान करना है, मन से आचमन करना है, प्रणाम करना है। अभी मैं आपको यशोदा कुंड की जो है ना प्रार्थना बताता हूँ, आप सुनिए। यशोदा कुरुते स्नानम नित्यमेव दिनम प्रति यतो संजायते कुंडम यशोदा सम्यकम शुभम। जिस कुंड में यशोदा रोज स्नान करती है ऐसे कुंड को मैं प्रणाम करता हूँ। धन धान्य सुखम देहि तीर्थराज नमोस्तुते वैकुंठ पदलाभाय प्रार्थयामि नमोस्तुते। यहाँ स्नान करके धन धान्य से पूर्ण हो जाते हम और वैकुंठ पद की प्राप्ति होती है। तो कहने का तात्पर्य है कि यशोदा कुंड पे कृष्ण भगवान को राधा रानी यशोदा माई स्नान कराती थी, कृष्ण बलराम दोनों को रोहिणी और यशोदा स्नान करती। और जब थोड़े से बड़े हुए तो सब मुखमार्जन करते थे, बाकी सब करते थे, लेकिन जब स्नान का समय आता था तो जीव गोस्वामी बताते हैं कि शर्मा के भाग जाते थे और कुछ देर बाद स्नान करके लौटते थे। तो फिर गोपियों में चर्चा हुई, अरे क्या हुआ आजकल तो वो बड़े शर्माते हैं, जब बटन निकालने का समय आता तो बड़े शर्मा जाते हैं। तो कहते हैं तो बड़े हो रहे हैं वो, आपके सामने वो वस्त्र निकाल कर स्नान करने में उनको संकोच हो रहा है। तो नंद बाबा ने उनके लिए कृष्ण कुंड बनाया, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। कृष्ण कुंड बनाया तो वहां पर वो जाके खुद स्नान करके आया करते थे, बाकी पहले वाली प्रातर विधि यही करते थे, तो स्नान करने का काम अपने सखाओं के साथ में वहां करते थे। यशोदा कुंड बहुत ही यशोदा का प्राइवेट कुंड है, यशोदा और रोहिणी भी यहाँ पर स्नान करती थी, यानी कि उनका चरणामृत है। बड़े प्रेम से वंदन कीजिए और आगे बढ़िए। देखिए यशोदा कुंड कितना सुंदर कुंड है, देखिए कितना सुंदर दृश्य है ये। अभी तो ये मेंटेन भी नहीं हो रहा है फिर भी इतना सुंदर है। तो उस समय तो मणि के इसमें घाट हुआ करते थे। यशोदा कुंड की धाम की जय हो। फिर हम आएंगे नंद बैठक, ये एक विशेष विशेष स्थान है। विशेष स्थान कैसा है, इसमें जब भी वत्सपाल यानी बछड़ों को लेकर चराया करते थे और आगे जाकर फिर बड़ी गायों को चराया करते थे, तो वो जाने के समय पर ये नीचे आके उनको बाय बाय करते थे और फिर ऊपर जाते थे। और नंद भवन के आगे शिखर पर दिन भर यशोदा मैया हर घड़ी जाकर ऊपर देखती थी, कहाँ है, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। एक दूर तक देखते थे कि नंद बाबा और यशोदा मई कि कृष्ण बलराम कहाँ दिखाई पड़ रहे, वो देखते थे। और एक सूरज को देखा करते थे, क्यों सूरज अभी तक ढला क्यों नहीं, इतनी देर से क्यों ढलता है, अभी तक इतना ऊपर क्यों है, तो ढलेगा तब मेरा कृष्ण वापस लौट के आएगा। इस भाव से वापस सूर्य को और दूर तक कृष्ण को देखते थे। और जब आने का समय होता था ना सूरज ढलने के बाद, तो उनको ऊपर रहा जाता नहीं था, ये दोनों सखियों को सबको लेकर नीचे आते थे इस जगह पर नंद बैठक पर, और यहाँ बैठकर उसका इंतजार करते थे, यहाँ बैठकर उसका इंतजार करते थे। और देखिए जरा गौर से देखिए कैसे बैठे हैं, हाँ एक नीला रंग का पैर एक गोरा रंग का पैर, कैसे मिले हुए देखो, ऐसे बैठे ऐसे मिले हुए, ठीक से देखिए दोनों गोद में बैठे हुए हैं, सखा दोनों बैठे हुए हैं और दोनों बता रहे हैं, सुनो बाबा क्या हुआ आज, ऐसे हुआ वैसे हुआ, कृष्ण बोल रहे हैं, बलराम जी बोल रहे हैं, फिर बाबा इधर देख रहे उधर देख रहे, दोनों को देख रहे हैं और दोनों ही और बात और खाली बात नहीं कर रहे हैं, बाकी सब सखा भी बात कर रहे हैं, आज क्या क्या हुआ बताने में सबको उत्सुकता है, सब बता रहे हैं। तो इस जगह पर फिर बहुत देर तक उनको गोद में बिठा कर दुलार कर प्यार कर उनकी बातें सुनकर जब शांत हो जाएंगे तो उनको उठाकर फिर ऊपर लेके जाया करते थे। इस तरह से ये नंद बैठक का दूर से नजारा है। इसके अंदर जाएंगे तो ये वो आपको फोटो मिलेगा, फिर आएगा हाउ बुलाऊ, हाँ उसके पास में ही है। देखो हाउ बुलाऊ का क्या महत्व है, ये जो कंस आया था ना उसके आने के पहले उन्होंने अपने सेनापतियों को भेजा था। तो सेनापति दो थे और दो पुत्र थे उनके, चार। तो शांडिल्य मुनि का वहां पर एक शाप था कि राक्षस लोग वहां पर आएंगे ना तो तुरंत वो पत्थर बन जाएंगे, ऐसा उनको शाप था। तो जैसे ही ये हाउ बिलाव यानी दो सेनापति और दो पुत्र वहां पर आए ना, कृष्ण बलराम को पकड़ने का प्रयास किया, उसी समय वो पत्थर बन गए। तो ये उनकी चार मूर्तियां हैं, अभी तो दो चोरी हो गए उसके चारों चोरी हो गए, लेकिन ये बहुत पुराना चित्रपट है, बहुत सुंदर चित्रपट है। तो ये हाउ बिलाव है ना, यशोदा मैया को बड़ा सुख देते थे। क्यों? क्योंकि इनको देखकर चंचल कृष्ण को थोड़ा बहुत नियंत्रण करने में वो सफल हुआ करती थी। इसलिए हाव बिलाव का प्रणाम मंत्र बोलेंगे जो यशोदा माता को धन्य सुख देते हैं। क्या है? नमः कृष्णेक्षकास्तुभ्यं धर्म कामार्थ मोक्षिणः पाषाण रूपिणो देवाः यशोदा शीष संस्थिताः। यानी कृष्ण का दर्शन कराने वाले, चार पुरुषार्थों को देने वाले, यशोदा के आशीर्वाद से यहाँ पर विराजमान पाषाण रूपी देवताओं, तुम्हें नमस्कार है। यशोदा इनसे बड़ी प्रसन्न थी क्योंकि इनके भय से वो कृष्ण को नियंत्रण करने में थोड़ी बहुत क्यों ना हो सफल हुआ करती थी। जब वो कहती थी दूर नहीं जाना आपको, देखो हवा आ रहा है, तो तुरंत कृष्ण भगवान पीछे भी न मुड़ते हुए भाग के गोद में आते थे। मैया मैया मुझे डर लग रो है, हवा आ रो है हवा। एक और लीला है उधर, ऐसे ही यशोदा डांट रही है, बेटा दूर मत खेलने जाना, हवा आया है। उस दिन कृष्ण ने ना थोड़ा अजीब सा जवाब दिया, हवा वो कहां से आया है, मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने इतने सारे अवतार लिए तो कभी हवा का दर्शन नहीं किया। अरे मैं तो कालिया को दमन करने के लिए यमुना जी के नीचे पाताल तक जाके आया था, कभी भी कभी हवा का दर्शन किया नहीं किया, तो ये हवा कहां से आया। तो मैया कहती है, अरे तुमने कब अवतार लिए, तुम तो भगवान हो क्या, तुम किसके अवतार की बात कर रहे हो। उसी समय बालक कृष्ण ने मैया यशोदा को हव बुलाव के बाजू में दश अवतार का दर्शन कराया। मैया बहुत आश्चर्यचकित हो गई, एक के बाद मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार सब दिखा दिए एक के साथ एक। मैया बहुत दिग्मूड हो गई, लेकिन एक स्माइल दिया कृष्ण ने और सारा जो देखा था मैया भूल गई। लेकिन हव बुलाव के पास भगवान ने यशोदा मैया को दश अवतार का दर्शन दिया है, तो इसको प्रणाम कीजिए और आगे बढ़िए और इस जगह को देखिए, थोड़ा ही बात में उसके, उसका नाम है मांट, मांट यानी दधी मांट, यानी यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मांट हुआ करते थे। ये मांट जो है ना, इसके अंदर मैं उतरा हूँ, मैं 6 फुट का हूँ, इसके अंदर उतरने के बाद भी इसके ऊंचाई में नाप नहीं सका, इतना वो गहरा और इतना बड़ा है। इसमें मैया नंद बाबा की गौशाला में जाकर दूध निकालकर यहाँ आकर मंथन किया करती थी, यहाँ जमाती थी और मंथन करती थी। और ये जो मटका है ना, ये मांट नाम का गांव वृंदावन के पास है, वहां पर बनके नंदगांव में आया करते थे। तो इस मांट को प्रणाम करते हैं। काम से निसुता कार्य सुमिक्ष्य दधिभाजनौ नमस्त्वमृत रूपाय देवानां मोक्ष हेतवे। देवताओं को भी मोक्ष देने वाला ये मांट है। यशोदा देवी के द्वारा नित्य पूजित, नित्य सेवित, नित्य उसमें दधुभाजन किया हुआ है, ऐसे मांट को हम प्रणाम करते हैं। फिर आगे हम चलते हैं, इस मांट को लेकर आगे चलते हैं। देखिए ये स्थान को देखिए, मैंने आपको कहा था ना कृष्ण कुंड, ये कृष्ण कुंड जो है ये कृष्ण नंद के, कृष्ण के लिए और बलराम के लिए नंद बाबा ने विशेष रूप से बनाया था, प्राइवेट उनके स्नान के लिए उनके बालकों के और फ्रेंड्स के साथ। इसकी विशेषता यह है कि ये बाल्यकाल का कृष्ण का स्नान कुंड है, कृष्ण भगवान और बालकों का जल के लिए यानी पानी में खेलने का स्थल है। और विशेष बात यह है, जब उद्धव जी वृंदावन में आए थे तो उद्धव जी ने यहाँ पर आके स्नान किया था, इसके किनारे पे उद्धव जी ने अपना रथ पार्किंग किया था और इस कुंड में स्नान किया था। तो गोपी ने पूछा था, अरे कौन को रथ है ये, कौन आयो है, तो बाद में पता चला कि उद्धव जी आए हैं। पहले लगा था कृष्ण आए हैं, बाद में लगा कि उद्धव जी आए हैं। फिर यहीं से वो उद्धव क्यारी चले गए थे। और साथ साथ में इसके ना, इसके बाजू में फोटोग्राफ नहीं, लेकिन साथ में उसके बहुत सुंदर मंदिर, उसका नाम है नृत्य गोपाल का मंदिर। और नित्य गोपाल का मंदिर का विशेषता क्या है, नित्य गोपाल का मंदिर का विशेषता यह है कि वहां पर ब्रजवासियों की यानी नंदगांव के गोस्वामियों की दीक्षा होती है, तो वहां पर उनका यज्ञोपवीत भी होता है और सेवा में आरंभ होता है ना, उसकी भी दीक्षा होती है, सेवा की दीक्षा भी होती है। तो हमारे रमेशचंद्र गोस्वामी है, वो रमेशचंद्र गोस्वामी जी हैं, तो उनका 5 साल तक वो देर तक होते थे और जब भी सेवा आरंभ होती थी तो 3 बजे उठना पड़ता है, तो उनकी दीक्षा हो गई, सेवा का उनका दीक्षा हो गई। तो मैया से आके अपने बोले, मैया मैं तो 3 बजे उठ नहीं पाऊंगा, मैं तो 8 बजे उठता हूँ, क्या करूँ, मेरी दीक्षा हो गई, कल से सेवा में जाना है। तो मैया ने बहुत इम्पोर्टेंट बात बताई, बेटा ये यशोदा माई से जाके प्रार्थना करो, उन्हीं की दया से यहाँ पर लाला की सेवा होती है। तो छोटा सा 5 साल का बालक रमेश जो है वो मंदिर चला गया, और मैया से प्रार्थना किया, मैया मैं कल से लाला की सेवा में आ रहा हूँ, मुँह पे कृपा कर दो। और तब से वो अगले दिन से 5 साल का बालक 3 बजे उठने लगा और मैया की सेवा में जाने लगा। तो रहस्य क्या है, अगर लाला की सेवा करनी है तो मैया का आशीर्वाद देना पड़ेगा, मैया के आशीर्वाद से लाला की सेवा कर सकते हैं। तो वो नृत्य गोपाल जी का मंदिर है, उसी नृत्य गोपाल जी के मंदिर में मंदिर के सामने खड़े रहकर, कृष्ण कुंड के किनारे खड़े रहकर कृष्ण भगवान माला में गायों का नाम लेते थे और गायों को पुकारते थे हमेशा, हे तिलकिनी, हे कपिला, हे ढूमर, हे कामर, कहाँ जा रही हो, चलो घर पे चलना है। तो माला में गिनती करते थे कितनी अपनी गाय है और सबका नाम माला पे फेरते हुए याद करते थे। तो कहते उन्होंने एक बार ना राधा रानी के साथ में बहुत वाद विवाद किया था, उसने कहा था, उन्होंने कहा था कैसे भद्दे आदमी हो तुम, कोई साधना नहीं करते हो, कोई भजन नहीं करते हो। तो उन्होंने बताया था, मैं सभी गायों का नाम लेता हूँ, गौ के चरण के रज में स्नान करता हूँ, माला में गाय के नाम का जप करता हूँ, मुझसे अधिक बड़ा साधन कोई नहीं कर सकता है, ये सबसे बड़ा महान साधन है। हाँ, वाद विवाद में हंसी मजाक में कहा, लेकिन बहुत बड़ी बात कह गए कृष्ण कि जो गौ के चरण के रज में स्नान करता है, जो गौ के नामों का जप करता है, उससे बड़ा कोई भजन दुनिया में नहीं है। तो कृष्ण कुंड को प्रणाम कीजिए, दंडवत कीजिए, प्रणाम कीजिए, आचमन कीजिए, वहां से आगे चलिए। हम चलेंगे अभी उद्धव क्यारी में। हाँ, उद्धव क्यारी ये स्थान जो है, अभी देखिए बड़े भाग्य की बात ऐसी है कि हमारे जो गुरु भाई हैं उन्होंने सब मिलकर इस जगह का जीर्णोद्धार किया। देखो पहले ऐसा था ये, हाँ पहले ऐसा था, वो जीर्ण जगह थी, देखो अभी ये कैसे सुंदर हो गया। ये भगवान की मूर्ति के जो जगन्नाथ, ये जो उद्धव जी की मूर्ति, इसके वस्त्र भी नहीं थे, तो सब राधा गोपीनाथ के भक्तों ने मिलकर दिए हैं। देखिए ये स्थान का महत्व क्या है, ये इस स्थान पर जब उद्धव जी आए तो उन्होंने कृष्ण कुंड में स्नान किया और यहाँ पर उनको गोपियां लेके आई, क्योंकि एकांत में बैठकर वो गोपियां उनसे बात करना चाहती थी। तो यहाँ पर वो लेके आई, इनको सिंहासन पे बिठाया और पूरी दिल की दास्तान सुनाई, हंसते हुए, रोते हुए, लोटपोट होते हुए, गदगद होते हुए। उद्धव जी हैरान हो गए उनकी भावना को देखकर, कुछ कुछ सोचकर आए थे कि मैं योगा सिखाऊंगा उनको, मैं प्राणायाम सिखाऊंगा, ब्रह्म ज्ञान दूंगा उनको, योगा योग से उनकी भावनाओं को नियंत्रण करूंगा। आगे क्या हुआ, ज्ञान की बगी बजी पुंगी और प्रेम को बजे ढोल। क्या हुआ, इनका ज्ञान जो है ना पुंगी जैसा हो गया और उनका प्रेम जो है ना ढोल की तरह बजने लगा। मतलब वो काव्य है, उसका अर्थ यह है कि यहाँ पर ज्ञान फेल हो गया और प्रेम ढोल की तरह बजा, प्रेम की ध्वनि दूर दूर तक सुनाई पड़ी, बृहद मृदंग की तरह। तो यही विशेषता है उद्धव जी का, तो गमन था ज्ञान का, क्योंकि ये तो बृहस्पति के शिष्य थे, कृष्ण के जैसा उनका रंग था, कृष्ण के सखा थे, कृष्ण के मित्र थे, कृष्ण का मंत्री थे, कृष्ण के खाते पीते बैठते शिकार करते साथीदार थे, बृहस्पति के शिष्य थे, हर तरफ से श्रेष्ठ थे वो, कृष्ण के सर्वोच्च सानिध्य का उनकी प्राप्ति थी उनको। तो थोड़ा घमंड था उनको, तो भगवान ने सोचा कि चलो अभी द्वारका मथुरा की शाला में ग्रेजुएट हो गए, अभी गोपियों की पाठशाला में PhD करने को भेजते उनको। तो गोपियों की प्रेम पाठशाला में भेजा उनको, तो सारा ज्ञान का घमंड चूर चूर हो गया और गोपियों ने अपना पूरा दिल उनके सामने खोल दिया। और फिर वो कहते हैं कि अरे उधो मन न भये 10-20, हाँ एक तो वो ले गयो और तुम किस मन की बात कर रहे हो नियंत्रण करने की, एक ही तो मन था वो ले गया, उसके साथ चला गया, हमारे पास भी कोई मन वन है नहीं, तो हम तुम मन को नियंत्रण करने की बात मत करो, हमारे पास मन तो है नहीं। फिर उद्धव जी ने कुछ बातें बताई उनको, ये परमात्मा परम ब्रह्म निराकार, मतलब कैसे निराकार, अरे वाके साथ तो हम खेले यहाँ में, लड्डू खाए यहाँ पर, लीला करी, सब कुछ करे, आप कह रहे हो निराकार कैसे, यहाँ ही तो बैठ के मक्खन खाया था। इस तरह से उद्धव जी का सारा ज्ञान फेल हो गया, यहाँ पर उद्धव जी गदगद हो गए। 6 महीने तक इसके बाद में उद्धव जी को गोपियों ने यात्रा कराई है ब्रज की, उद्धव जी चुप रहे, सब गोपियां बोलती रही और उन्होंने देखा कि कृष्ण के विषय में बोलते हुए गोपियों को बड़ा आनंद आ रहा है, इसलिए उन्हें खुद बोलना बंद कर दिया, बोलने के लिए आए थे बोलना बंद कर दिया, सुनते रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि आगे उनके मन में यही विचार आया कि मुझे गोपियों के चरणों की रज चाहिए। द्वारका गए, कृष्ण को संदेश दिया और लौट के वापस आए, तपस्या किया तृण का पत्ता बनने के लिए, तृण का पत्ता बन भी गए। तो ये जो स्थान है ना इसको हम देख रहे हैं, देखो ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर कृष्ण का खत उन्होंने गोपियों के लिए पढ़ा था और यहीं पर सबसे दिव्य अनुभूति उद्धव जी को प्राप्त हुई थी। इसको सुनने के बाद में उद्धव जी को लगा कि ब्रज में इतना श्रेष्ठ भाव प्रकट हुआ है तो यहाँ पर कोई ऐरा गैरा आना नहीं चाहिए, इसलिए उद्धव जी ने यहाँ पर कांटे बोए हैं। जो भी बबुल के वृक्ष आपको दिखाई पड़ते हैं ना, वो सब उद्धव जी के बोए हुए हैं, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति जिसका योग्यता नहीं है ब्रज में आने की, वो आ नहीं पाएगा, कांटों से परेशान होकर भाग जाएगा। लेकिन जो योग्य व्यक्ति होगा उन कांटों को सहते हुए भी ये रहस्य जानने के लिए अंदर आएगा। ये उद्धव जी का भाव था। तो यहाँ पर उद्धव जी देखो रंग कृष्ण जैसा है, राधा रानी गोपियों को सुना रहे हैं कृष्ण का मैसेज क्या है। और ये उद्धव जी को आप प्रणाम करेंगे, क्योंकि उद्धव जी और शंकर भगवान और ब्रह्मा जी ऐसे कुछ गिने चुने लोग हैं जिन्होंने अपने उच्च पद पर होते हुए भी नीचे आने के लिए तपस्या किया। बाकी लोगों ने नीचे से ऊपर जाने की तपस्या किया, लेकिन हमारे उद्धव जी ने, ब्रह्मा जी ने, शिव जी ने, ये सब लोगों ने सब सर्वोच्च पद पर होते हुए भी सबसे निचला पद प्राप्त करने के लिए तपस्या की है, ये उनकी विशेषता है। तो उद्धव जी को प्रणाम कीजिए, उद्धव क्यारी को प्रणाम कीजिए। क्यारी का मतलब सिंहासन, बैठने की जगह, यहाँ पर गोपी ने उनको बिठाया था। तो आप सब लोग इस स्थान को प्रणाम कीजिए। इसी स्थान में एक और स्थान है, इसका नाम है विशाखा कुंड। यहाँ पर विशाखा जी राधा और कृष्ण को मिलाती थी और विशाखा कुंड में कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ स्नान करते थे, सखियां जल क्रीड़ा करती थी। और इसके ठीक सामने आपको नंद गांव का दर्शन होगा, नंद भवन का। तो ये विशाखा कुंड है और यहाँ पर विशाखा कृष्ण भगवान को राधा रानी को मिलन करा करती थी। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ललिता जी का कुंड आएगा, ये कुंड था विशाखा का कुंड है। थोड़ा आगे चल के जाएंगे तो ललिता का कुंड आएगा। ये जो कुंड ललिता का है, ये यहाँ पर कृष्ण को उन्होंने स्नान कराया था जब राधा कृष्ण का पहला मिलन होना था नंदगांव में आने के बाद में। तो ललिता जी ने उनको यहाँ पर स्नान करके फिर पहनावली गांव में जाकर दूल्हे के वस्त्र पहनाए थे, इसलिए गांव का नाम पड़ा पहनावली। फिर एक काजल कुंड है और एक गांव का नाम है कजरोठा, तो उस गांव में उनको काजल लगाया था दूल्हा बनाने के लिए, इसलिए काजल कुंड नाम पड़ा। उसके किनारे पे कजरोठा गांव में उन्होंने काजल लगाया था। तो ये ललिता कुंड है, यहाँ पर कृष्ण को स्नान कराया था। देखिए इतना सुंदर कुंड है और आगे इसके अंदर देखिए, ये ललिता बिहारी जी का मंदिर है। राधा एक तरफ राधा है, एक तरफ ललिता जी है और मंदिर का नाम ललिता बिहारी जी है। और यहाँ पर क्या लीला हुआ था एक बार, यहाँ पर ना झूला बहुत प्रसिद्ध है, आप आगे जाकर दिखाता हूँ। ये झूला है, झूलन स्थली है। तो यहाँ पर एक बार सब सज्जत कर आए, कृष्ण भी आ गए लेकिन राधा रानी को देर हो गई, तो सब तैयार वेटिंग कर रहे थे। तो नारद मुनि वहां पर आ गए, अरे राधा रानी को आने को देर है, ललिता जी आप ही झूलो कृष्ण के साथ। तो ललिता जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं झूलूंगी, हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। लेकिन नारद मुनि ने बहुत ही आग्रह किया, सब सखियों ने मिलकर भी आग्रह किया, कृष्ण ने भी आग्रह किया। तो फिर संकोच से ललिता जी विराजमान हो गई, देखिए इसलिए विराजमान हो गई और बैठ गई और कृष्ण के साथ झूलने लगी। तुरंत नारद मुनि बरसाना चले गए और राधा रानी श्रृंगार कर रही थी, अभी तो श्रृंगार पूरा नहीं हुआ था, लेट हो रहा था। तो देखो देखो तुम लेट कर रहे हो, वहां पर ललिता झूल रही है तुम्हारी जगह पर। तो राधा रानी को बड़ा मान हुआ, वहां से नाराज होकर यहाँ पर आई, देखा तो ललिता झूल रही है, तो नाराज होकर चली गई, मान करने का एक कारण। तो ये दृश्य है यहाँ पर, बहुत सुंदर लीला होती है यहाँ पर। और देखिए ललिता बिहारी जी, ये झूलन स्थली है। और अभी हम क्या करते हैं, ललिता कुंड को नाम प्रणाम करते हैं। सब लोग हाथ जोड़िए। और कृष्ण भगवान यहाँ पर राधा के दर्शन करने के लिए आते थे छुप छुप के। ललिते स्नपने नम्य स्वर्ग द्वार विधायिने नमः विमलतोयाय तीर्थराज नमोस्तुते। इसको तीर्थराज कहा गया है, हाँ इस कुंड को तीर्थराज कहा गया है। और यहाँ पर ललिता भी स्नान करती है, कृष्ण भी स्नान करते हैं। स्वर्ग द्वार कहा गया, यहाँ से भगवत धाम की प्राप्ति होती है, इसका जल बहुत पवित्र है। यहीं से आगे जंगल में जाएंगे तो आपको दो मिल वन मिलेगा, वहां पर रुनकी और झुनकी दो गोपियां कृष्ण राधा रानी को गुप्त रूप में मिलाते थे, इसलिए उनका नाम रुनकी झुनकी दो मिल वन। और वहां पर पूर्णमासी का भी आश्रम है, पूर्णमासा पूर्णमासी रोहितानी आश्रम, ये अभी आगे है जंगल में वो, इसके आगे हम चलते हैं, फिर हम लोग आएंगे। थोड़ा पूर्णमासी के बारे में थोड़ा विचार करना जरूरी है। पूर्णमासी का निवास नंदगांव में है। जब रोहिणी देवी गर्भवती थी और उनको वसुदेव जी ने सुरक्षा के लिए नंद बाबा के पास भेजा था, उसी दिन ये आई थी। ये सांदीपनी मुनि की बड़ी बहन है और मधुमंगल इसके सौतन का पुत्र है। तो काशी में तपस्या करती थी अपने पति के मृत्यु के बाद में, और सौतन का बेटा उसके साथ में रहा करता था मधुमंगल, उसको लेकर ये ब्रज में आई थी। और उसको देखकर उसकी तपस्वी दर्शन करते हुए नंद बाबा ने उसके लिए महल बनाया था, यानी कि झोपड़ी बनाई थी रहने के लिए। तो उसका नाम है पूर्णमासी पुरोहितानी आश्रम। तो ये काशी से आई थी और चंद्रावली को भी विदर्भ से लेकर आई थी, और राधा कृष्ण के विवाह का मुहूर्त इससे निकाला था। और चंद्रावली पूर्णमासी देवी, यशोदा देवी, रोहिणी देवी और सभी बड़ी गोपियों की गुरु थी। इस तरह से बहुत सुंदर भवानी का अवतार पूर्णमासी, इनका ये ब्रज लीला के अंदर प्रवेश इस तरह से हुआ है और ब्रज वास भी प्राप्त हुआ है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिए ये जो आगे का स्थान है ये है आशेश्वर महादेव। जब भी भगवान जन्म लेते हैं, जैसे प्रभु राम के रूप में, बावन के रूप में, कृष्ण के रूप में, और अपनी बाल लीला करते हैं, तो सभी देवता उनका दर्शन करने आते हैं। और विशेषता क्या है कि गौलोक धाम में कभी भी भगवान के बाल रूप के दर्शन नहीं होते हैं, इसलिए जब भी पृथ्वी पर भगवान अवतार लेते हैं तो उनके बाल रूप का दर्शन करने के लिए सभी देवता नीचे आते हैं। तो ऐसे गोकुल में भी आए थे शंकर भगवान, तो उनका वहां पर नाम है चिंता हरण महादेव। फिर वो नंदगांव में भी आए थे तो उनका नाम पड़ा आशेश्वर महादेव। एक सेकेंड रुकिए जरा। तो वहां पर शंकर जी आए थे और देखिए ये आशेश्वर कुंड है, दोबारा एक बार दिखाएंगे आपको। तो यहां पर शंकर जी दर्शन करने अभिलाषा से आए थे और उन्होंने मैया से कहा दर्शन दिला दो लाला के। तो सांप वाप देखकर मैया डर गई, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं लाला के ऊपर बहुत बुरा असर होगा। और बाद में उनको एक बात समझ में आई मन में अपने आप, तो लगा अभी पहले पहले तो कोई सुंदर स्त्री बनकर आए राक्षस, उसके बाद में बैलगाड़ी बनकर आए, उसके बाद में बवंडर बन के आए, बैल बनकर आए, उसके बाद में बछड़ा बनकर आए, अभी साधु बनकर आए। हाँ मैं नहीं फंसने वाली, कंस की तरफ से राक्षस लोग भेष बदल के आ रहे हैं, अभी मैं नहीं फंसने वाली और आपको दर्शन नहीं दूंगी, इसलिए मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। फिर महादेव जी तो परम वैष्णव है, अपने भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं और कहते हैं मोती नहीं चाहिए, धान्य नहीं चाहिए, लाला के दर्शन चाहिए। तो वो और उनको डाउट आया मन में, दरवाजा ही बंद कर दिया। फिर हमारे शिव जी महाराज जो है ना वो इस वन में आए। देखिए इस वन में आए कि आशेश्वर कुंड के किनारे बैठकर उन्होंने भजन किया, रो रो कर भगवान को पुकारा। हाँ भगवान मैं इतनी दूर से आपके दर्शन के लिए आया हूँ और मैया दर्शन नहीं दे रही है। अभी मैया जो है ना वो मैया के कब्जे में भगवान है ना, पूरी तरह से उनके प्रेम के कैद में बंद है, और वो मना करेंगे तो क्या चांस है। तो ये यहाँ पर बैठ कर रोए, हाँ बड़ी आशा लेकर रोए। हमारे गुरु महाराज कहते हैं सबसे निराश अवस्था में, इन द मोस्ट होपलेस कंडीशन, इफ समबडी सीज होप देन ही अट्रैक्ट्स द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। जब सबसे निराश अवस्था में हम आशा को देखते हैं, आशा रखते हैं, वो भगवान की कृपा को आकर्षित करता है। इस तरह से आशेश्वर महाराज ने यहाँ पर बैठकर एक आदर्श स्थापन किया है कि कभी निराश नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, भगवान को पुकारना चाहिए। और कैसे पुकारना चाहिए, रो रो कर पुकारना चाहिए, इसका एक उदाहरण यहाँ स्थापन किया है। जब रोने लगे तो भगवान बालक है, लेकिन बालक है तो क्या हो, भगवान तो भगवान ही होते। तो उन्होंने अपना जो ब्रह्मास्त्र निकाला, बालक का ब्रह्मास्त्र क्या होता है, रोना। जब बालक रोता है ना तो बड़े बड़े परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर हो या पीएचडी हो या बड़ा इंजीनियर हो, देश का प्रधानमंत्री हो, जब बालक रोता है ना सबकी हालत खराब हो जाती है। तो जब बालक रोने लगा तो खिलौना दिया, दूध पान कराया, क्या क्या किया, तो और जोर से रोने लगा। तब पूर्णमासी ने एंट्री किया और पूर्णमासी ने कहा, क्योंकि उन्होंने पूर्णमासी को बुलाया क्योंकि वो गुरु है ना, उनकी समस्या हो रही है, बालक रो रहा है। तो पूर्णमासी आई, बोला अरे तुम लोग ने वो इतने बड़े महात्मा दूर से आए थे उसको तुमने भगा दिया, वो जानती है ना मैं अपने पति है, वो भवानी के अवतार है, ये तो शंकर जी आए वो जानती है। तो अपने पति के लिए कह रही, अरे वो बाबा बड़े सिद्ध बाबा है, बड़े दूर से आए हैं, उनकी कृपा से ये रोना बंद करेगा, जाओ उसको बुला लाओ। तो मैया, यशोदा मैया ने सब सखियों को भेजा और उसको बुला लिया। देखो मैया भी कैसी है, बालक की सुरक्षा के लिए ये बाबा को दरवाजा मुंह पे बंद करके भगा दिया, और बालक के ही आनंद के लिए उसी बाबा को बुलाने जा रही है। हाँ, सखियों को भेज रही है। देखो हम अगर रहते ना, हम तो नहीं जाते, किसी को भेजते नहीं, हमारा अहम उनको अलाउ नहीं करता, लेकिन बालक जिसके केंद्र स्थान में है भगवान, उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, धक्का भी दे सकते हैं किसी को या चरणों में भी गिर सकते हैं, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है। बालक का हित जो है वो सर्वश्रेष्ठ उनके मन में है। तो शिवजी बाबा हमारे भाग भाग के ऊपर आते हैं। हम और देखिए भाग भाग के ऊपर आते हैं और फिर दर्शन देते हैं उनको, बालक का दर्शन कराते हैं। और जैसे ही देखिए आते हैं ना, तो शिवजी राधा गौरव गाते हैं। राधा गौरव गाते ही बड़ा हुंकार देते हैं और जोर से रोने लगते हैं। तो मैया पूछती, बाबा कहाँ आए गो अभी, बालक रो क्यों रो रो है? तो शिवजी समझ गए कि बालक क्या चाहता है। तो शिवजी ने फिर अपने हाथ से बालक के माथे पर हाथ फेरा और राधा का नामावली सुनाया, राधा का नाम कीर्तन किया, माथे पे चंदा, जटाओं में गंगा लेकर धारण किया है, और जब राधा का नाम सुनाया तो शांत हो गया बालक। अभी देखो मैया क्या बोल रही है, तुम ध्यान से सुनो। मैया बोल रही है, अरे रह रे जोगी नंद भवन में, ब्रज में बासो कीजे। अरे जोगी, तू बड़ा चमत्कारी भोग जोगी है, तेरे आते ही बालक ने रोना बंद कर दिया, तू तो बड़ा चमत्कारी बाबा है, अभी तू ब्रज को बासो कीजे, ब्रज में बास करो, जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। यही रहो अभी आप। मतलब क्या हुआ, मैया ने महादेव बाबा को लाला का खिलौना बनाया। जब बालक रोता है ना, तो हम किसका सहारा लेते हैं, खिलौना का सहारा लेते हैं, है ना। तो महादेव जैसे महान व्यक्ति भी भगवान के लिए खिलौना बन गए। देखो और क्या बोला उन्होंने, अब तुम ऊपर रहना और कहीं रहना नहीं। तो मैंने आपको बताया था ना, नंदीश्वर महादेव का दर्शन बाद में कराऊंगा। वो नंदीश्वर को उन्होंने वहां पर आश्रय दिया और वादा किया, जब जब बालक को भोग लगाऊंगी ना, उसका माँ प्रसाद पहले आपको खिलाऊंगी। जब जब उन्होंने और एक रिक्वेस्ट किया कि जब जब बालक को स्नान कराओगे ना, उसका जल मेरे सर पे आके डालना। और आज भी जब भी लाला का अभिषेक होता है सुबह, तो उसका जल पहले नंदीश्वर पे चढ़ता है। और जब बालक को भोग लगता है, बाल भोग लगता है, ग्वाल भोग लगता है, राज भोग लगता है, तो सारा भोग पहले नंदीश्वर को अर्पण करते हैं। तो आइए हम लोग इस सुंदर पेड़ का दर्शन करें जहाँ के नीचे बैठकर तपस्या किया उन्होंने। और ये जगह है आशेश्वर वन में, यहाँ पर ब्रजवासी दाल बाटी चूरमा का पार्टी करते हैं। ये उनकी फेवरेट स्थान है आशेश्वर वन। यहाँ पर ब्रजवासी लोग, जवान लोग, बूढ़े लोग, सब लोग मिलकर ना आते हैं, यहीं पर दाल बाटी चूरमा बनाते हैं और यहीं पर पार्टी करते हैं, गीत गाते हैं, नृत्य करते हैं। और ये आशेश्वर महादेव का दर्शन है, देखिए बहुत सुंदर दर्शन। यहाँ पर बैठकर हमारे आशेश्वर महाजीव ने हमको सिखाया कैसे आशा लगानी है और कैसे आशा को पूर्ण करने में यश प्राप्त करना है। ऐसा सुंदर स्थान है ये। तो हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे कि हमें भी आप कभी निराश पर होने देना, और निराश नहीं होने देना कभी जीवन में, निरुत्साह होने मत देना, हमेशा हौसला बनाए रखना। ऐसे हम आशेश्वर महादेव से प्रार्थना करते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए और हम आगे बढ़ते हैं अभी। और यहाँ पर यही ये जो मंदिर है, इसमें शंकर महाराज के चरण कमल है। देखिए आप, ये शंकर भगवान के चरण कमल है, इनको भी प्रणाम कीजिए। और ये आशेश्वर वन है, पूरा आशेश्वर वन, इसी वन में शंकर महाराज ने तपस्या की थी। फिर आगे हम चल के खेत में आगे जाएंगे तो सुंदर स्थान पे आएंगे, उसका नाम है तेर कदम्ब। ये हमारे रूप गोस्वामी की भजन स्थली है। यहाँ पर रूप गोस्वामी ने जब उनका राधा गोविंद जी का मंदिर बन रहा था, तो यहाँ पर आकर एकांत भजन किया था। ये वो स्थान है जहाँ पर कृष्ण बलराम आके विराजते थे, ये उनका मंच है, यहाँ पर विराजते थे। देखिए कैसे पीलू के पेड़ों का सुंदर मंडप बना है। हमेशा हम बताते हैं कि करोड़ों का खर्च भी करेंगे ना, तो ऐसा नेचुरल मंडप कहीं नहीं मिलेगा। और यहाँ पर एक कदम का पेड़ है, जंगल के अंदर है, ये रास मंडल है। और ये इतना ऊंचा पेड़ था, जब गौचारण करते थे ना, तो रात को शाम को जब लौट के आते थे सूर्यास्त के समय, तो कदम्ब के पेड़ के सबसे ऊपर के डाली पर बैठते थे और मुरली बजाते थे। कदम्ब चढ़ कान बुलावत गैया, कदम के ऊपर चढ़ते हुए कान्हा जो है वो गैयाओं को पुकारते थे, गैयाओं को पुकारते थे, अपनी मुरली में चौथी धुन बजाते थे, और अपनी मुरली में जो चौथी धुन बजाया करते थे तो सारी गायें कान ऊपर करके, पूंछ को ऊपर उठा के, गला ऊपर करके भाग भाग के इस पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे और मुरली की तान सुनकर पागल जैसे हो जाते थे। कुछ गायें सुनकर भी अनसुनी करते थे। जब ये चौथी धुन कृष्ण बजाते थे तो सभी गायों के कान में उनका नाम सुनाई पड़ता था। धुन तो एक ही बज रही है लेकिन हर एक गांव गाय को अपना नाम कान में सुनाई पड़ रहा है, तो वो सुनकर भाग भाग के आ रही है। तो इस प्रकार से बाकी जो गाय सुनकर भी अनसुनी करती थी उनको वो लेकर आते थे जाकर तप तपाकर, और फिर सभी गायों को लेकर नंद भवन में प्रवेश करते थे। यही स्थान है वो, यही वो पेड़ है, इसको हम टेर कदम, टेर का मतलब क्या होता है, पुकारना, टेर देना, टेर देकर मुरली के द्वारा गायों को बुलाते थे। यहाँ पर रास मंडल भी है, यहाँ पर रास भी खेलते थे भगवान, और ये रूप गोस्वामी का भजन स्थली है। यहाँ पर रूप गोस्वामी ने ललित माधव, विदग्ध माधव, भक्ति रसामृत सिंधु, उपदेशामृत और पद्यावली और बहुत सारे ग्रंथ लिखे यहाँ पर। यही वो स्थान है एकांत में यहाँ पर भजन किया। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है राधा रानी ने एक बार आकर रूप गोस्वामी को दर्शन दिया था और अपने हाथ से खीर बनाकर खिलाया था। उस दिन सनातन गोस्वामी जी भी आए थे, वो खीर जब भी राधा रानी के हाथ से बनाई हुई सनातन जी ने खाई तो उन्होंने पूछा, अरे रूप ये कहाँ से आई खीर बताओ। रूप ने कहा कि एक लड़की आई थी, उन्होंने सामान लाया था, मैंने कहा मैं भजन में व्यस्त हूँ तू ही खीर बना दे, तो उन्होंने खीर बना दी। अरे वो राधा रानी थी, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे वर्णन से, वो राधा रानी स्वयं आई थी। तुम कैसे भक्त हो, तुम यहाँ भजन करने आए हो उनको रिझाने के लिए, उनकी सेवा लेने के लिए आए हो। ऐसे डांटा उन्होंने बहुत रूप गोस्वामी को, लेकिन डांटते हुए भी खीर खाते रहे, रूप भी खाते रहे, सनातन भी खाते रहे, क्योंकि उनको इतना आनंद आ रहा था, कंठ गदगद हो रहा था, आंखों से अश्रू आ रहे थे, रोमांच हो रहे थे। तो राधा रानी ने स्वयं यहाँ पर आकर रूप गोस्वामी के लिए, सनातन गोस्वामी के लिए अपने हाथों से खीर बनाई और वो अदृश्य हो गई, और वो दोनों के दोनों ने इस खीर का आस्वादन किया। आज भी आप इस जगह जाएंगे ना तो आपको, कभी भी जाएंगे तो आपको दोनों पर खीर मिलेगी, उसी भाव से बनाते हैं। फिर राधा रानी ने आकर अपने भक्त के लिए खीर बनाई, ये उनकी भजन स्थली है। और जब रूप गोस्वामी ने यहाँ भजन किया तभी सनातन जी भी पावन सरोवर पर भजन किया करते थे। और ये टेर कदम का कुंड है, बहुत सुंदर कुंड कमलों से भरा हुआ, और ये रास मंडल है। No, why is that? I will share again, don't worry. I will share again, don't worry. अभी दिखाई पड़ रहा है? दिखाई पड़ रहा है?
Yes, sir. Yes.
Very good. तो ये रास मंडल है और टेर कदम का स्थान है। और देखिए सभी गाय, कोई कारी है, कोई घूरी है, कोई घोरे रंग की है, कोई पीले रंग की है, कोई रक्त वर्ण की है, सब प्रकार के 108 झुंड हुआ करते थे नंद बाबा के, और वो सब लोग यहाँ पर एकत्र होते थे और यहाँ से फिर झुंड लेकर भगवान अपने घर पहुँचते थे नंद बैठक के पास। इसके आगे हम जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे, देखिए ये हो गया हमारा टेर कदम, उसके पहले गए आशेश्वर महादेव, फिर टेर कदम के बाद में हम गाड़ी में बैठेंगे और उसके आगे जाएंगे 8 किलोमीटर दूर जाएंगे तो यशोदा के जन्म स्थान पे आएंगे। यशोदा के जन्म स्थान का बड़ा विशाल कुंड है, यशोदा कुंड, गांव का नाम है मेहरानो। अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया इसके अंदर, एक स्लाइड गलत से बीच में आ गया, कोई बात नहीं, अभी हम वहां से मेहरानो लास्ट में जाएंगे, लेकिन उसके पहले मोती कुंड जाएंगे जो वहां से बिल्कुल पास में है। मोती कुंड के पास में कृष्ण भगवान ने मोती चुरा कर माता पिता के पास से मोतियों की खेती की थी और मोती उगाए थे खेत में, और वो फिर सगाई के शगुन के रूप में बरसाना भेजे थे। बड़ी लंबी कहानी है वो, अभी समय नहीं बताने के, लेकिन संक्षिप्त में बताएंगे आपको कि राधा रानी यशोदा मैया को बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने उनको रोज लाना शुरू कर दिया, लेकिन रोज आना जाना इससे वो बहुत भाव विभोर हो गई। एक दिन गले लगाया, प्रेम से आलिंगन दिया और हाथ को हल्दी लगा दी, फिर वापस चली गई, फिर कुंड में हाथ धोया, वो कुंड पीला हो गया, तो वो खुश होकर उन्होंने, कीर्ति मैया ने और विश्वानु बाबा ने एक बैलगाड़ी भर के मोती भेजे। वो मोती देखकर बड़े खुश भी हुए नंद बाबा यशोदा, लेकिन दुखी भी हो गए कि रिटर्न गिफ्ट में शगुन के लिए हमारे पास इतने अच्छे मोती नहीं है। कहते थे कि एक मोती 10 लक्ष सुवर्ण मुद्रा से भी खरीदने जैसा योग्य नहीं था, इतना कीमती एक मोती था। ऐसे 1 लक्ष मोतियों की मालाएं भेजी, एक एक माला में कई मणि थे, 1 लक्ष मणियों की माला भेजी शगुन के रूप में। और ब्राह्मण ने कहा कि आपको भी रिटर्न में शगुन में कुछ भेजना पड़ेगा। तो वो सब परेशान हो गए कि हमारे पास तो इतना कीमती मोती है नहीं। तो कृष्ण ने अपने माता पिता के इच्छा के खिलाफ मोती चुराए और खेत में बोए यहाँ पर आकर इस कुंड के किनारे, और उससे बहुत सुंदर तेजस्वी, जिसने तेजस्वी आए थे उससे भी तेजस्वी मोती बनाए और फिर बैलगाड़ी में भर के शगुन के रूप में भेज दिए। तो यह है मोती कुंड जहाँ पर कृष्ण ने नंद बरसाने के मोती बोकर बड़े सुंदर मोती उपजाए। देखो ये राधा मोती बिहारी का दर्शन है, बड़े प्रेम से दर्शन कीजिए राधा मोती बिहारी जी। और यह है मोती कुंड शाम के समय का, बहुत ही सुंदर। नंदगांव से बिल्कुल एक किलोमीटर भी दूर नहीं है, पावन सरोवर से 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। और देखिए ये मोती कुंड हो गया, एक बार वापस देख लीजिए, मोती कुंड का दर्शन कीजिए, फिर मोती बिहारी का दर्शन कीजिए, संध्या के समय मोती कुंड का दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए, इसमें आचमन कीजिए, वंदन कीजिए और आगे बढ़िए, फिर देखिए आप इस स्थान पर आएंगे। ये भी बहुत पहाड़ी के पास में ही है नंदगांव के, यहाँ पर चरण पहाड़ी, मतलब यहाँ पर कृष्ण के चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्हों को देखकर गोपियां रोया करती थी, जब कृष्ण भगवान चले गए तो कृष्ण की याद में यहाँ बैठकर आंसू बहाया करती थी। गर्ग संहिता में लिखा है कि कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह, हस्त चिन्ह, शरीर के अंगों का चिन्ह जब कोई देखता है तो वो दोबारा जन्म प्राप्त नहीं करता है भौतिक दुनिया में। इसलिए बड़े गौर से, दिलो जान से, आत्मा से इसको दर्शन कीजिए और स्पर्श कीजिए हाथ से और प्रणाम कीजिए। ये हमारे सबसे बड़ी भाग्य की बात है कि भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन हो रहा है, और भगवान के चरण चिन्ह की कृपा प्राप्त करके इस चरण पहाड़ी से हम आगे बढ़ते हैं और पावन सरोवर में आते हैं। पावन सरोवर एकदम बहुत ही बड़ा विशाल कुंड है, और इसकी विशेषता क्या है, देखो दूर तक आगे देखेंगे ना आप तो आपको एक स्लोप मिलेगा, और स्लोप के अंदर से कृष्ण भगवान गायों को लेकर आते थे और पानी पिलाते थे। ये कृष्ण भगवान का नंबर 2 का सबसे प्रिय स्थान है। हाँ, इसमें बहुत सारी लीलाएं हैं, एक दिन लगेगा यहाँ की लीला बताने के लिए, लेकिन हम खाली नंबर बताएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ, देखो इसका पहले नाम था नंद सरोवर। तो जिस दिन यहाँ पर नंद बाबा ने साक्षात त्रिवेणी संगम प्रयागराज को आकर स्नान करते हुए देखा, उस दिन से इसका नाम पावन सरोवर पड़ा। अक्षय तृतीया के दिन इस कुंड पे स्वयं प्रयागराज व्यक्ति रूप में आकर स्नान करते हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, सभी जितनी नदियां हैं, सैकड़ों नदियां, व्यक्ति रूप में आकर अक्षय तृतीया के दिन यहाँ पर स्नान करते हैं। इसलिए सभी तीर्थों को भी पावन करने वाला, इसलिए इसका नाम पावन सरोवर पड़ा है। इसके अंदर यशोदा जी का घाट है, देखिए आप ये घाट दिख रहा है, पड़ रहा है आपको, ये जो छतरी पहली वाली ये है, दूसरी वाली ये है, तीसरी वाली ये है, चौथी वाली जो छतरी है उसके पास में एक कुआं है, इसका नाम है यशोदा कूप। राजा रानी को भोजन बनाने के लिए यशोदा मैया ने अपने ही घाट के बाजू में एक मीठे पानी का कुआं बनाया। देखिए ये फोटो में देखिए आप, आपको बराबर पता चलेगा, जो एरो दिखाया है वो पावन बिहारी मंदिर का है, राधा कृष्ण का मंदिर है, और ये जो बड़ा एरो है येलो वाला वो नंद भवन दिखा रहा है आपको पीछे से, इसके आगे राइट में देखेंगे तो कुआं दिखा रहा है ना, वो इस कुएं का पानी लेकर राधा रानी कृष्ण भगवान के लिए भोजन बनाती थी। ये जो मंदिर है ना गुलाबी रंग का जिसमें दिखा है पावन बिहारी जी, ये इसका दर्शन है पावन बिहारी जी का। और ये किनारे पे ये जो भक्त लोग आचमन कर रहे हैं, बड़े वरिष्ठ वैष्णव है, महाप्रभु दास, रोनिंदन दास वगैरह, उसके पीछे जो इमारत दिखाई पड़ रही है सफेद, वो वल्लभाचार्य की बैठक है। वल्लभाचार्य जी ने यहाँ बैठकर भागवत कथा की थी, जब भागवत कथा करते थे तो उस जगह को बैठक कहा करते थे। ऐसे भारत में उनकी 84 बैठक है, उसमें से एक बैठक पावन सरोवर के किनारे पे है। उसी के थोड़ा आगे जाएंगे, देखो थोड़ा आगे जाएंगे तो ये चैतन्य महाप्रभु की बैठक है, ये वल्लभाचार्य की बैठक है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था ना, ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही आपको मैं आगे दिखा रहा हूँ, ये वल्लभाचार्य की बैठक है। इसके आगे चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया था ना, तो वो यहाँ पर बैठ के उनके चरण चिन्ह भी उसके अंदर है, यहाँ पर बैठ के भजन किया था। और सनातन गोस्वामी का यहाँ पर भजन कुटी है, तो आपको आगे के साइड में दिखाऊंगा। ये देखिए, नहीं शायद आगे चला गया, देखिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस फोटोग्राफ में आपको दिखाई पड़ेगा जो सफेद रंग का निशाना है, उसमें कुआं है, यशोदा कूप, उसके बाजू में सफेद रंग का मंदिर दिखाई पड़ता है, वो सनातन गोस्वामी का भजन कुटी है। और उसमें कृष्ण भगवान बड़े प्रेम से उनको दूध पिलाने के लिए बालक बनकर आए थे। कहा था, अरे बाबा थोड़ा भिक्षा मांगा करो, यहाँ पर गोपिया तो तेरो इंतजार कर रहे हैं, आप उनको भिक्षा मांगने के लिए अवसर दे दो, आप यहाँ पर बैठ के अकेले भजन कर रहे हो, गोपियों ने मुझे बताया कि बाबा को कछु खातो पीतो है ना है, इसलिए मैं स्वयं आपको दूध देने को आया हूँ। तो कृष्ण को दूध, कृष्ण ने दूध पिलाया है और रोमांच का अनुभव हुआ इनको कृष्ण के हाथ का दूध पी के। ये देखिए, ये भक्तों का दर्शन कीजिए, ये 2019 की यात्रा है नवंबर की, जहाँ पर 300 भक्त जो है वो यात्रा करने के लिए आए थे, उनका सुंदर दर्शन आपको हो रहा है। तो पावन सरोवर में क्या क्या बचा देखो, कृष्ण का बहुत ही साक्ष्य लीला का नंबर 2 का अनुकूल स्थान है, कृष्ण अपने गायों को जलपान कराते थे यहाँ पर, चैतन्य महाप्रभु की बैठक है, वल्लभाचार्य की बैठक है, सनातन गोस्वामी की बैठक है, और आगे दिखाओ यहाँ पर अकिंचन कृष्णदास बाबा जी की बैठक पड़े हैं, ये श्री प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, दिन रात कीर्तन करते थे, दिन रात भगवान के नाम का जपते थे, कभी सोते हुए नजर नहीं आते थे। यहीं पर राधानाथ स्वामी इनको मिले थे पावन सरोवर के किनारे पे। विश्वभानु महाराज ने पावन सरोवर के उत्तरी तट पर राधा रानी के लिए महल बनवाया था, ताकि कृष्ण को मिलने के लिए आसानी हो। ऐसा लिखा है शास्त्र में कि पक्षी भी इसके ऊपर उड़ते हैं तो मोक्ष प्राप्त करते हैं। ब्रज भक्ति विलास में कहा गया है कि नंद राय और यशोदा मैया ने आंचल वस्त्र को गांठ बांधकर यहाँ पर दोनों ने मिलकर स्नान किया था, और कृष्ण जन्म के समय, उसके उत्सव के समय इसी किनारे पे नंद बाबा ने लाखों गायों को दान दिया था, और इसके स्नान आचमन करने से सभी पाप राशि नष्ट होती है। इसलिए आप सब लोग यहाँ पर आचमन करो, स्नान करो, प्रणाम करो, पावन सरोवर के स्नान करने से सब समस्त पाप राशि नष्ट हो जाती है। अब मैं पावन सरोवर का प्रणाम मंत्र बोलता हूँ, आप सब लोग मेरे साथ में सुनिए। नमः पावन रूपाय देवानाम कल्मषापहम नंदादि पावनायैव तीर्थराज नमोस्तुते। सभी देवताओं को भी पापों को हरण करने वाले, सबको पावन करने वाले, हे पावन रूप हम आपको प्रणाम करते हैं, और यशोदा के कूप का भी प्रणाम करते हैं, जो यशोदा जी का जो कुआं है ना। तत्रैव सरतो मध्ये यशोदा कूपम उत्खनत यत्र कूपम पिबोत्तोयम कृष्ण तुल्यम सुतो भवेत। सरोवर के मध्य में यशोदा का कूप है, इसका जलपान करने से कहते हैं कृष्ण के समान पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा ये पावन कुंड है। इसके आगे चलते हैं, अभी नंदगांव के पावन सरोवर को दिल से प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, अकिंचन बाबा को प्रणाम करते हैं और सनातन गोस्वामी के कुटी पर प्रणाम करते हैं, भजन कुटी पर, और आगे बढ़ते हैं। आगे कहाँ आएंगे, मेहरानो यशोदा देवी के गांव में आएंगे। आइए, आपका स्वागत है मैया के मायके में, आपका स्वागत है। देखिए कितना सुंदर गांव है मैया का, मेहरानो विलेज, बहुत सुंदर सुंदर वृक्षावली है, बहुत शांत गांव है, कोई आश्रम नहीं, कमर्शियल नहीं, कुछ नहीं, आपको सच्चे ब्रज का आनंद यहाँ पर आएगा। देखिए इतना विशाल कुंड है, इतने विशाल पेड़ है, और सूर्योदय का दर्शन हो रहा है, और यशोदा माई के चरण छूइए, आप यशोदा माई को प्रणाम कीजिए, जय यशोदा माई की। और यहाँ पर सीता राम और लक्ष्मण का दर्शन है, कारण क्या है उसका, उसकी कथा ऐसी है, एक बार कृष्ण भगवान और बलराम जी का जन्म होने के बाद में यशोदा माई रोहिणी के साथ बलराम कृष्ण को लेकर अपने मायके गई थी। जब मायके गई तो वहां के ग्वाल बालों के साथ में कृष्ण बलराम बहुत 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 खेले और थक गए। रात को कह रहे, मैया बहुत पैर दर्द कर रहे हैं, थोड़ा मालिश करवा दो। तो दोनों मैयाओं ने दोनों बालकों के पैरों को मालिश करवाया, जैसे हम लोग भी करते हैं अपने बालकों का, बहुत दिन में कूद कूद कर थकते हैं, और जब बोलते आई पाए दुखता पाए चेपुंडिया, तो हम लोग उनके पैर दबाते हैं, है ना। तो फिर और फिर गोद में सोने लगे, तो कृष्ण ने कहा कि हमें मैया कहानी सुनाओ, उनको नींद आ रही है, अभी कहानी सुनाओ। क्या सुनाओ? रामायण सुनाओ। तो रामायण सुनाने लगे, तो कहानी का पर्पज था कि ये सो जाए, लेकिन कहानी जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते कृष्ण हुंकार दे रहे हैं, हूं सुन रहे हैं, आगे बोलते जा रही है। अचानक सीता हरण का सीन आ गया, उसका वर्णन करते ही कृष्ण भगवान आवेश से एकदम उठे गोद से और बोले, लक्ष्मण कहाँ हो तुम? मेरा धनुष लेकर आओ, अभी मैं रावण का वध करता हूँ, सीता को लेकर गया है। वहां पर बलराम जी सो रहे थे, वो भी उठ गए, भैया अभी धनुष लेकर आता हूँ। इतने जोर से कांप रहे थे, क्रोध से होंठ भी कांप रहे थे, धड़कन धड़कन बढ़ रही थी, कपाल पर बसीने आ रहे थे, और इतने आवेश लेकर मैया बहुत आश्चर्यचकित हो गई। तो उस आवेश में दोनों मैयाओं को कृष्ण बलराम ने राम लक्ष्मण का दर्शन कराया। इसीलिए मेहरानो गांव में दर्शन किसका है? राम लक्ष्मण का है, क्योंकि वहां पर ये राम लक्ष्मण जो है वो राम लक्ष्मण नहीं है, कृष्ण बलराम है। मैया को उन्होंने दर्शन कराया, उसके बाद कैसे भी करके उनको शांत करा के सुलाया, और रोहिणी मैया से यशोदा कहती है, पता नहीं बालकों को क्या हो जाता है। तो रोहिणी मैया समझाती है, अरे दिन भर नाटिकाएं करते रहते हैं, ड्रामा करते रहते, खेलते रहते, तो उसमें उनको कभी कभी आता है मूड, तो वो भूल जाते हैं। लेकिन साक्षात राम और लक्ष्मण का दर्शन कृष्ण बलराम ने अपनी मैया को इस गांव में किया था, इसलिए इस गांव में राम लक्ष्मण का दर्शन है। आप बड़े प्रेम से इनको दर्शन कीजिए, और फिर हम वापस एक बार मैया को प्रणाम कीजिए। हमारा ये भाग्य था कि सबसे पहले जब हम इस गांव में गए थे तो मैया का जन्मदिन था, यशोदा जी का बर्थडे था उस दिन। तो नंद भवन में गए, वहां पर यशोदा जी का विशेष हार प्राप्त हुआ, और उसी जगह गोसाई महाराज के मोटरसाइकिल पर बैठ के हम जन्मदिन के दिन ही जन्म स्थान पे गए थे उनके, और बाद में बहुत बहुत लोगों को कई बार लेके गए। आप उनका प्रणाम कीजिए। एक बात बताना जरूरी है कि वात्सल्य भाव में बहुत भक्त हैं, रोहिणी जी हैं, बड़ी गोपियां हैं, नंद महाराज हैं, वसुदेव हैं, देवकी है, कुंती देवी है, लेकिन भगवान को डांटने का अधिकार केवल एक ही व्यक्ति को है, वो है यशोदा मई। रोहिणी भी कभी डांट नहीं पाई भगवान को, नंद महाराज भी डांट नहीं पाए कभी महाराज को, लेकिन एक ही यशोदा माई कैसे डांटती थी सुनना है आपको? डांटती कैसे थी कि जब खेलते थे ना तो टाइम पे घर पे आते नहीं थे, कोई गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, कभी बिट्टी डांडू खेल रहे हैं, कभी कुछ खेल रहे हैं, कभी गेंद खेल रहे हैं, और रोहिणी माई डांटती थी पुकारने के लिए, बेटा कृष्ण बलराम बाबा घर पर भोजन करने के लिए आए, जल्दी चलो भोजन करने के लिए। वो कहाँ सुनते हैं, सुनते नहीं थे, सुनते अनसुनी करते थे। तो बहुत देर थक कर रोहिणी मैया घर पे आती थी, यशोदा दीदी वो मेरे ने सुनते हैं, वो आपको ही जाना पड़ेगा। यशोदा मैया आती थी, हे सड़क चा बलक, क्या कर रहे हो तुम? बाबा कब से आप बैठे हो? शर्म नहीं आती तुमको? कैसे धूल लगी हुई है, कैसे गंदे बालक बने हो, चलो घर पे हवा आ जाएगा। इस तरह से वो डाटा करती थी। हाँ, ना नंद महाराज को ना रोहिणी को कभी हिम्मत हुई, लेकिन यशोदा मैया कृष्ण भगवान को डांटती थी। तो ऐसे यशोदा मैया का भाव है, सर्वोच्च सर्वोच्च वात्सल्य भाव जो है यशोदा मैया का है, नंद बाबा से रोहिणी मैया से भी ऊपर है उनका भाव। तो उनको आप प्रणाम कीजिए, इन्हीं की कृपा से कृष्ण के लिए कुछ प्रेम प्राप्त होगा, यही तो वात्सल्य की धरोहर है, वात्सल्य का सागर है ये। प्रणाम करिए और मेहरानो गांव का दर्शन करते हुए विदा लेंगे यहाँ से, और फिर आगे चलेंगे, हम गोस्वामी के घर जाएंगे, क्योंकि ब्रजवासियों के घर जाए बिना आपकी यात्रा थोड़ी संपन्न होगी। दर्शन तो आपने किया स्थानों का, लेकिन जो स्थान में जो लोग रहते हैं, जो साक्षात कृष्ण बलराम की अपने हाथों से सेवा करते हैं, जो अपने हाथ से फुलका बनाते हैं, जो हाथ से बंटा भोग बनाते हैं, हाथ से श्रृंगार करते हैं, हाथ से आरती करते हैं, उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करना जरूरी है। देखिए हमारे महाराज के बहुत प्रेमी है सब लोग, ये देखिए राइट प्राइट में कौन है, जो बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं उनका नाम है रमेश चंद्र गोस्वामी जी। इन्होंने ही चार पांच साल के समय पर जो दीक्षा ली थी, तो यशोदा मैया को जाकर प्रार्थना की थी कि मोए जगाओ, और बीच में महाराज जी बैठे हमारे परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, जो गुलाबी कुर्ता पहने हैं वो सुशील गोस्वामी हैं, ये हमारे परम मित्र हैं सब लोग। सुशील गोस्वामी के बाद में उनके बड़े भाई लोकेश गोस्वामी हैं, उनके बाद में हरी रंग की साड़ी पहनी हुई है तो उनकी माता जी है, गोस्वामी जी की पत्नी है, गोसाइन है, उनके बाजू में जो लड़के बैठे हुए हैं वो ब्रजेश गोस्वामी हैं, वो सब भागवताचार्य हैं, लोकेश जी अध्यापक हैं और सुशील जी पत्रकार हैं। तो ये जो मैया है ये रमेश जी के बड़े भाई की बीवी है जो विधवा है, बहुत पहले उनके पति का देहांत हो गया, तो ये इनके घर पे महाराज जी भोजन के लिए आए हैं। देखिए आप भोजन कीजिए अभी। ये नंदगांव का मंदिर का महाप्रसाद है, इसको कच्चा प्रसाद कहता है, कच्चो प्रसाद। ये पावे को बड़े भाग्य की जरूरत है। हाँ देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें अंगा है, ये जो है ना सफेद, ये जो नीचे है ना टुकड़ा, इसको अंगा कहते हैं। ये कड़ी कड़ी पकौड़ी है, ये दाल है,